बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज हमारा जो ये सेशन है ये सेवेंथ है इस सीरीज का। वी विल बी टॉकिंग अबाउट वी आर वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कॉन्वर्सेशंस, इफेक्टिव कॉन्वर्सेशंस। आपको याद होगा कि ये जो हमारे सीरीज है इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर कैरेक्टर डेवलपमेंट से है। इसमें अगर कुछ सवालात भी पैदा हों तो इंशाल्लाह वी विल बी टेकिंग देम अप। कि ये जो हम कॉन्वर्सेशंस की बात कर रहे हैं, अफेक्टिव कॉन्वर्सेशंस, हाउ कैन दे बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। मुझे ऐसा लगता है जी कि जो अच्छी कॉन्वर्सेशंस होल्ड करना है इसके लिए आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल डेवलप करने की ज़रूरत है, हम सबको, और जो बिलमूम इस कल्चर में सपोर्ट नहीं होती। हमारा ये जो कल्चर इस वक्त जिसमें हम रहते हैं, अब दुनिया का कल्चर जो बन चुका हुआ है ऑलमोस्ट, वो असल में आर्गुमेंटेशन का कल्चर है। हम आर्गू करते हैं ज्यादा, वी डोंट कॉन्वर्स विद ईच अदर, वी डोंट डायलॉग विद ईच अदर, हम ज्यादातर आर्गुमेंट्स में पड़ जाते हैं। और ये वही स्पिरिट है जो हम बचपन से सीख रहे होते हैं कि हमने किस तरह से मुकाबला जीतना है। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे सारे स्कूल्स इस चीज को शायद समझते नहीं हैं, रिकग्नाइज नहीं करते हैं कि इट्स अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन अ पर्सनैलिटी। जिस वक्त आप इसकी कोशिश करें कि बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक दूसरे से कंपीट कर रहे हो, हमारा ख्याल ये है कि कंपटीशन हमारे अंदर एबिलिटी पैदा करता है हायर परफॉर्मेंस की, जबकि ये बात रिसर्च से बिल्कुल साबित नहीं है। अगर कभी मौका आएगा तो इंशाल्लाह इस पर भी बात करेंगे कि हाउ कंपटीशन कैन डेवलप सच ट्रेट्स इन आवर पर्सनैलिटी, इन आवर कैरेक्टर, कि जो अल्टीमेटली विच आर नॉट वेरी डिजायरेबल। हम हर वक्त एक दूसरे के साथ कंपैरिजंस करके अपनी वर्थ डिटरमिन कर रहे हैं, हम बजाय इसके कि अपने अंदर सेल्फ वर्थ डेवलप करें, हम दूसरों के साथ कंपेयर करके डेवलप कर रहे हैं। आर्गुमेंट्स जब कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं तो वी वांट टू बी वन अप, बजाय इसके कि हम ये देखें कि बात समझने की क्या है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे की कंस्ट्रक्शन क्या है। हम वी जस्ट वॉन्ट टू विन अ डिबेट। एवरी कॉन्वर्सेशन दैट वी हैव कम्स आउट टू बी और बॉयल्स डाउन टू बींग डिबेट और एन आर्गूमेंट। तो हमने अभी तक इस सेशन में, जो आपको याद होगा पिछले 4-5 हफ्तों से, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द ब्रेक जो हमें लेनी पड़ी, कुछ फ्लू की कैफियत थी और उसके बाद वीकनेस काफी ज्यादा थी जिसके बाद 2 हफ्ते हम नहीं कर सके। ये तो अल्लाह का नाम लेके फिर से शुरू करते हैं जी। अ वेरी ब्रीफ रीकैप कि हम ये देख लें कि हमने अभी तक जो किया है इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्या है। हमने वी टॉक्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्वर्सेशंस। ये मेरा ख्याल है कि हमारा चौथा सेशन था, इसको जो लोग मिस कर चुके हैं वो देख लें जरूर। इट्स जस्ट अबाउट 20-25 मिनट्स की बात है ये, इसको देख लें। अगर क्वेश्चन आंसर सुनना चाहें तो वो भी सुन सकते हैं। इम्पोर्टेंस पे हमने इस चीज का जिक्र किया था कि ये अहमियत क्या है हमारे लिए भी, हमारे रिलेशनशिप्स में भी, कि अच्छी कॉन्वर्सेशंस की कितनी ज्यादा अहमियत है। दूसरी चीज हमने जो शुरू की थी जिसका एक हिस्सा हमने अभी किया है, दैट इज गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कॉन्वर्सेशंस। इसमें जो पहला हिस्सा था जिसको हम अब पिछले पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किया, वो दैट रिलेटेड टू एनरिचिंग आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। जब भी कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं तो इसमें दो हिस्से हैं जिसका हमें हर वक्त ख्याल रखता है। एक ये कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें, और दूसरा ये कि जिस ग्रुप के अंदर हम कॉन्वर्स कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग में अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंट्रीब्यूट करें, अगर कंट्रीब्यूशन डिजायर्ड है और लोग इसके लिए तैयार हैं। ये इम्पोर्टेंट है जी। आपका जो पहला हिस्सा है एनरिचिंग आवर ओन अंडरस्टैंडिंग का, इसका ताल्लुक असल में सिर्फ आपसे बन जाता है कि आप कितनी अच्छी तरह से बात सुन रहे हैं, कितने प्रेजेंट हैं। प्रेजेंस खुद एक ऐसी स्किल है जिसके ऊपर हम आइंदा बात करेंगे। हाउ कैन वी बी मोर प्रेजेंट इन द मोमेंट, बजाय इसके कि हम हर वक्त हर लम्हा जब भी कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो आपने गौर किया होगा कि हम बजाय इसके कि उस पॉइंट पर तवज्जो दें कि जो जेर बहस है, हम आगे का सोच रहे होते हैं कि अगर ये मान लिया जाए तो इसके नतायज क्या निकलेंगे. सो वी बिकम हमारी जो प्रेजेंस है वो डिस्टर्ब होती है, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न्ड विद द रिजल्ट्स कि जो ये प्रोड्यूस करेगी. हमने इस पर बात की कि हम अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग को कैसे एनरिच कर सकते हैं, और आज से हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे दैट रिलेट्स टू कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स अंडरस्टैंडिंग, कि हम ऐसे क्या चीजें कर सकते हैं, हमें किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए कि जिसके नतीजे में दूसरों की अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूशन हो, अगर वो कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है और अगर दूसरा तैयार है समझने को. देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक शर्त है, एक कंडीशन है जो इस पर लागू होती है कि दूसरा इसके लिए तैयार भी है या नहीं है. अगर दूसरा इसके लिए तैयार ही नहीं है कि उसने बात समझनी है, तो आप कुछ नहीं कर सकते. यू कैन ओनली प्रे, यू कैन ओनली डिवेलप अ बेटर रिलेशनशिप मे बी, कि जिसके नतीजे में वो कल को बात सुनने के लिए तैयार हो जाए. उस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आप, वो भी तब अगर दूसरा इसके लिए दरवाजे खोले. हम इसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे वो हमारी अपनी औलाद क्यों ना हो. वी कैन नॉट हैव दैट इन्फ्लुएंस और दैट कंट्रोल ओवर अदर्स, कि जिसके नतीजे में हम उनको इस चीज पर फोर्स कर सके या ये आमादा कर सके कि वो बात सुने. अगर ऐसा हो पाता तो यकीन कीजिए कि कोई भी पैगंबर ऐसे ना होते कि जिनके मुखातिबीन उनका इनकार करते. अगर ऐसा हो पाता तो कोई भी पैगंबर ऐसे ना होते जिनकी अपनी औलाद उनके मुनकरीन में शामिल होती. हम वी आर फोर्स, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस लिमिटेशन, कि हम ज्यादा से ज्यादा जो कर सकते हैं वो दूसरे की के लिए ऐसी एनवायरनमेंट, ऐसी ऐसे तरीके इख्तियार कर सकते हैं कि जिसके नतीजे में दूसरा बात सुनने पर आमादा हो, लेकिन आमादा कर नहीं सकते. तो ये जो एस्पेक्ट है इसको आपने हमेशा सामने रखना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी डिसाइसिव. और ये वो चीज है कि जिसकी वजह से अच्छी कॉन्वर्सेशंस करना जो है वो कैरेक्टर डेवलपमेंट का हिस्सा है, ना कि मेयरली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तकाजा ये करती है कि आप कॉन्वर्सेशन में आपका हाथ ऊपर रहे, यू शुड बी वन अप. आप हर चीज को, जिस तरह से हमने कॉम्पिटिशन बना लिया, आप उसको भी जीतें, आपके नंबर ज्यादा हो दूसरों के मुकाबले में. जबकि कैरेक्टर डेवलपमेंट ये तकाजा करती है कि हम दूसरे की बात को समझें, दूसरे को बात समझाने की कोशिश करें, उसको इस पर आमादा करने की कोशिश करें कि वो बात को अपने दिल से समझने की कोशिश करे. और एक चीज ये कि ये सारी जो चीजें इसमें दरकार होंगी वो हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज के बगैर पैदा नहीं हो सकती. मिसाल के तौर पर पेशेंस के बगैर नहीं पैदा हो सकती, मिसाल के तौर पर हुस्ने जन के बगैर पैदा नहीं हो सकती. हम फौरन दूसरे के बारे में, अगर आपको मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एज अ टीचर इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर दो लोग बात समझ गए हैं और कुछ लोग नहीं समझे हैं, तो उसके नतीजे में मैं लोगों की इंटेलिजेंस को के बारे में जजमेंट्स देने लग पड़ू, मैं दूसरों के बारे में ये कहने लग पड़ू कि वो सिंसियरली बात समझना नहीं चाह रहे. हुस्ने जन रखना दूसरे के बारे में ये बड़ा जरूरी है, बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्स जो कि अगर आज अच्छी कॉन्वर्सेशन नहीं भी हो पाई तो कल के लिए अच्छी कॉन्वर्सेशन के दरवाजे खोल सकती है. हम एक एक करके इन पॉइंट्स को, कि जो आज हमने जेर बहस लाने हैं, उसको ले लेते हैं जी. कि इसमें जो सबसे पहली चीज है विच वी शुड कीप इन माइंड, दैट रिलेट्स टू फाइंडिंग योर ओन वॉइस. फाइंडिंग योर ओन वॉइस का मतलब ये है कि आप अगर एक ग्रुप का हिस्सा हैं जिसमें कि बात हो रही है और लोगों की राय, एक बड़ी अक्सरियत की राय या सारों ही की राय ऐसी है कि जो आपकी राय के खिलाफ है, तो डोंट बी बॉग डाउन. अपनी बात को प्रेजेंट करें, अपनी बात को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें और कोशिश करें कि बात समझ में आए. इसके नतीजे में ये जरूरी नहीं है कि लोग बात मान लें, ये भी हो सकता है कि आपको अपनी बात की गलती समझ में आ जाए. ताहम हम अक्सर औकात ग्रुप थिंक का शिकार हो जाते हैं. ग्रुप थिंक किसे कहते हैं कि अगर एक ग्रुप में 5, 7, 8, 10 लोगों की एक राय है, तो बाकी लोग जो हैं वो खामोशी से उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, बजाय इसके कि उसको चैलेंज करें या उससे इख्तलाफ करने की जरूरत करें, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और खामोश रहते हैं. ये पैसिवली हम उस मेजोरिटी का हिस्सा बन जाते हैं, अगरचे हमारी बात जो है इट इज पॉसिबल कि अगर वो रखी जाती तो उसको सुना भी जाता और उसको उसके मुताबिक लोगों की राय भी बदल जाती. सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट वी नीड टू फाइंड आवर ओन वॉइस. वी शुड नॉट बी बॉग डाउन बाय द ओपिनियन ऑफ द ग्रुप. वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट हमारा अपना माइंड जो है वो ओपन रहना चाहिए. आज मेरी राय डिफरेंट है, ताहम हो सकता है कि अगर मैं अपनी बात रखूं और उस पर अच्छे कमेंट्स आए और मेरी बात मुझे समझाई जाए कि उसमें क्या गलती है, तो मुझे उसमें गलती समझ में आ जाए और उसके नतीजे में मेरी अपनी डेवलपमेंट हो सकती है. हाउएवर, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपकी राय ये बनी है किसी भी ऑडियंस के साथ, किसी भी कोई भी किस्म के मुखातिबीन के साथ ये राय बनी है कि इस वक्त इनको ये बात समझ में नहीं आएगी, ये जो बात है कि नहीं समझ में आएगी, इसका आपको कोई पॉजिटिव रीजन ढूंढना चाहिए. मिसाल के तौर पर अगर आप ये महसूस करें कि इस वक्त इमोशंस आर वेरी हाई, एक बच्चा है या एक इवन एक बड़ा है, जवान है, अगर वो किसी बात पर हाई इमोशंस में है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब भी इमोशंस हाई होते हैं तो बात को समझने से ज़हन अक्सर औकात कासिर रहता है. तो व्हाटएवर द रीजन, चाहे वो नेगेटिव इमोशंस हैं पॉजिटिव हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आप महसूस करें कि ये मौका ठीक नहीं है बात समझाने का, तो उस मौके पर अपनी बात को होल्ड बैक करने का फैसला भी आप कर सकते हैं. एंड दैट माइट बी अ गुड डिसीजन. ठीक है जी, इट माइट बी द राइट डिसीजन. आप जो बात हो रही है उसको उस जगह पर रोक सकते हैं. एक बात तो ये कि अपनी आपने वॉइस ढूंढनी है, बिकॉज अगर आप अपनी वॉइस नहीं ढूंढेंगे तो इसका एक नुकसान ये होगा दैट पीपल विल एक्चुअली लैक द ओपिनियन विच माइट हैव बीन करेक्ट. दूसरी बात जो इस सिलसिले में मैं अर्ज करूंगा वो ये है कि ट्राई टू बी एज क्लियर एंड पेशेंट इन प्रेजेंटिंग योर आइडियाज इज पॉसिबल. ये जो बात है कि अगर आप गौर करें तो ये डायरेक्टली रिलेट करती है हमारी कैरेक्टर डिवेलपमेंट से. यानी पेशेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी है. हम इंशाल्लाह जब आगे चलेंगे तो इस पर भी बात करेंगे कि अपने लिए हम जब विजन क्रिएट करते हैं तो वो विजन एट्रीब्यूटिव विजन होना चाहिए. इट शुड नॉट बी अबाउट मेरा करियर क्या होगा, नॉट मेयरली अबाउट दैट, बट अबाउट द एट्रीब्यूट. तो उनमें आमतौर पर मैंने ये देखा है कि जब लोग ये सेलेक्ट करते हैं अपने लिए एट्रीब्यूट, तो उसमें एक मेजर एट्रीब्यूट पेशेंस हमेशा आता है. एंड ये हम जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से कि ये इसको रिलीजियसली भी बड़ी वैल्यू दी जाती है और मॉरली भी इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी हाई लेवल एट्रीब्यूट. इस मामले में बीइंग एज क्लियर एंड पेशेंट इन प्रेजेंटिंग आवर आइडियाज एज पॉसिबल, इसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. द मोर यू प्रैक्टिस, अपने एक एतमाद के ग्रुप में आप अपनी बात को प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस कीजिए और इससे आपको अपनी बात को प्रिसाइसली प्रेजेंट करने की आदत हो जाएगी. यू विल बिकम मोर प्रोफिशिएंट इन डूइंग दैट. इस मामले में जो चंद चीजें हमें बहुत ख्याल रखनी चाहिए वो ये कि बी माइंडफुल अबाउट नॉट जजिंग द इंटेलिजेंस और सिंसेरिटी ऑफ अदर्स. जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि अक्सर औकात ये हो जाती है हमसे गलती कि अगर हमने एक बात कही है जो कुछ लोगों को समझ में आ गई है और कुछ लोग उससे समझने से कासिर रहे हैं, तो हम आमतौर पर उनकी इंटेलिजेंस को जज कर लेते हैं. ये बात एक तो वैसे उसूल में समझ लीजिए कि इंटेलिजेंस कोई एक चीज नहीं है जी. इंटेलिजेंस के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं और ये वेरियस एस्पेक्ट्स हर आदमी को अगर आप सेपरेटली देखने की कोशिश करें तो उसकी इंटेलिजेंस का म्यार सबका हमारा सबका डिफरेंट होता है. इसमें हार्वर्ड गार्डनर की बड़ी इंपॉर्टेंट इनपुट है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है अगर आपको पढ़ना चाहे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के नाम से, जिसमें एक अनफॉर्चुनेट चीज हमारे ऊपर वाजे होती है कि हमारा जो पूरे का पूरा एजुकेशनल सेटअप है वो बेसिकली दो किस्म की इंटेलिजेंसेस को जज करता है और उसकी बेसिस पर लोगों को दूसरों से बेहतर या कमतर करार दे देता है. सिर्फ दो, जबकि देर आर मल्टीपल इंटेलिजेंसेज जिस पर इंसान जो है उसको परखा भी जा सकता है और हम सब लोग अपनी इन सारी मल्टीपल इंटेलिजेंसेज की अगर क्राइटेरिया पर पूरे उतरने की कोशिश करें तो एक चीज में हो सकता है कि मैं बेहतर हूं और अब बाकी चीजों में शायद आप बहुत बेहतर हो जाएं. लेकिन चूंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो इसमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है हमारी इंटेलिजेंस को जज करने में, जिसमें कि सिर्फ वो लॉजिकल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जज करता है। पूरे की पूरी हमारी एजुकेशन सेटअप जो है वो इन दो, आई एम सॉरी जी, इन दो इंटेलिजेंसेस के ऊपर बेस्ड है, और इसी की बेस पर लोगों को वो ग्रेड करता है। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू टेल समबडी, ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू समबडी, तो अपनी जजमेंट को रोक के रखें। अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो ये इसका लाजमी नतीजा ये नहीं है कि वो इंटेलिजेंट कम है या वो सिंसेयर नहीं है बात समझने में। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपका स्पीकर का और लिसनर का रैपो डेवलप नहीं हुआ। मुझे ये याद है कि टीचर्स को मुखातिब करते हुए मैंने कई दफा ये गुजारिश की कि आपकी क्लास में जो बच्चे नहीं समझ पा रहे उनको दूसरे टीचर्स की हेल्प से समझाने की कोशिश करें। कई मर्तबा ये होगा, और इसका ये लाजमी नतीजा नहीं है कि कोई एक टीचर दूसरे से बेहतर है। कई मर्तबा ये हो जाएगा कि एक बच्चा जो आपसे नहीं समझ पाया वो किसी और टीचर से समझ पाए। आपका जो असल इशू है वो अपनी बर्तरी को साबित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि बच्चों की हेल्प करनी है कि हमने समझाना है। ये अनफॉर्चुनेटली इस चीज को मानते नहीं है हम, इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली वही जो पैराडाइम है हमारा कॉम्पिटिशन का, कि अगर मेरे से बात नहीं समझी है तो किसी और से समझने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाई शुड आई बॉदर विद दैट, जबकि एक टीचर का माइंडसेट होना यही चाहिए दैट अगर मेरे से बात नहीं समझ में आई तो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट अनदर टीचर हैज अ बेटर रैपो विद दैट स्टूडेंट। वो जो रैपोर अच्छा है उसके नतीजे में बात समझनी शायद आसान हो जाए। ये चीज अक्सर औकात देखने में आई है कि टीचर्स से ज्यादा आसानी से पीयर ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे को बात समझा सकते हैं, और इसकी बड़ी अहम वजह ये है कि उनका आपस का रेपो बहुत अच्छा होता है। तो इस चीज का नंबर वन, द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड ऑलवेज बी माइंडफुल अबाउट इज नॉट जजिंग अदर्स अबाउट देयर इंटेलिजेंस और अबाउट देयर सिंसियरिटी। नंबर टू, अगर जरूरत हो तो गिव ब्रीफ एग्जाम्पल्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लैरिफाई करने में, अपने आइडिया को क्लैरिफाई करने में छोटी एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, और रोजमर्रा की जिंदगी से। ये वो प्रैक्टिस है जिसकी मैं ऊपर पॉइंट नंबर टू में मैंने बात की कि इसको प्रेजेंट करने में आपने कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जब आप अपनी अपनी बात की रोजमर्रा की जिंदगी से मिसालें दे सकेंगे तो बात ज्यादा कम्युनिकेबल हो जाएगी जी, बात ज्यादा समझ में आएगी। नंबर थ्री, इफ अदर पार्टिसिपेंट्स टू अ कॉन्वर्सेशन डू नॉट अंडरस्टैंड योर आइडिया, रिपीट इट, रिफ्रेज इट एंड सीक अदर्स हेल्प हु मे हैव अंडरस्टूड इट। अगर आपके एक ग्रुप में 10 लोग हैं, 6 को बात समझ में आ गई है, 4 को नहीं आई है, तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं जिन 6 को समझ में आई है, कि वो कुछ हेल्प करें आपकी समझाने में। अगेन द आइडिया इज दैट रादर देन जजिंग योर ओन लैक ऑफ इंटेलिजेंस और दी अदर्स, हम ये सोच सकते हैं कि ये असल में इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल रेपो। बिकॉज इस चीज को ध्यान में रखें कि कॉन्वर्सेशन में असल में दो इंसान इन्वॉल्व है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि मैंने अमल करना है और दूसरे ने लाजमन वो असर ले लेना है जो असर मेरी तरफ से मोटिव था मेरा, या मेरी तरफ से जो इंटेंडेड था। हो सकता है कि वो बिल्कुल और तरफ से देख रहा हो एक चीज को और उसको समझने में मुश्किल हो रही हो। तो बिकॉज इट इज अ ह्यूमन बीइंग, और अगर उसका रिलेशनशिप किसी आपके पार्टिसिपेंट के साथ ज्यादा अच्छा है तो उधर बात समझने में आसानी हो जाएगी। ट्राई नॉट टू ब्रिंग इन योर ईगो हियर, ठीक है जी, कि मेरे से अगर बात नहीं समझ में आई तो बात ये समझना चाहता नहीं है, या ये बात कि ये ही इज नॉट इंटेलिजेंट इनफ। हम कोशिश करें कि हमने बात को समझाना है और हमारा मकसद पूरा हो जाता है कि अगर बात समझ में आए, चाहे वो मेरे जरिए से समझ में आए या किसी पार्टिसिपेंट की हेल्प के जरिए से समझ में आ जाए। द अगली चीज ये कि बी ऑन गार्ड अगेंस्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। दिस स्पेशली होल्ड्स ट्रू उन कॉन्वर्सेशन में कि जिधर आप महसूस करते हैं कि डेड एंड पे बात आ रही है, यानी बात आगे चल नहीं पा रही है। आपके पेश नजर ये था कि आपने एक पॉइंट को कम्युनिकेट करना है, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि बार बार एक ही बात को क्लैरिफिकेशन, एक ही चीज की मांगी जा रही है। आपको इसके खिलाफ अपने आप को, यू शुड बी ऑन गार्ड अगेंस्ट गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, बिकॉज इफ यू गेट फ्रस्ट्रेटेड तो वो जो इमोशंस हैं आपकी जब हाई होती हैं तो आपकी अपनी कम्युनिकेशन और कॉन्वर्सेशन को वो हैम्पर करना शुरू कर देंगी। नंबर थ्री, व्हेन अ पॉइंट इज बीइंग डिस्कस्ड, अगर एक ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन में बातचीत हो रही है तो अक्सर औकात देखने में ये आएगा कि एक तीसरा आदमी ऐसी बात कर देगा कि जो ऑन गोइंग कॉन्वर्सेशन से बजाहिर अनरिलेटेड है, और इसके नतीजे में बात का जो फैलाव है वो और बढ़ जाता है, बजाय इसके कि हम किसी नतीजे पे पहुंचते हम उसको इतना फैला देते हैं कि वो बात अनड्यूली लंबी होने की का खदशा पैदा हो जाता है। इसमें इसीलिए ये लिखा कि इग्नोरिंग दिस गाइडलाइन कैन क्रिएट कंफ्यूजन्स एंड कैन प्रोलॉन्ग कॉन्वर्सेशंस अननेसेसरीली, कि हमें इस चीज को अवॉइड करना है कि बजाय इसके कि हम कंफ्यूजन्स क्रिएट करें अपने ऑडियंस के लिए या अपने सुनने वालों के लिए या अपने कॉन्वर्सेशन पार्टनर्स के लिए, हम कोशिश करें कि जो बात है उसको एक एक स्टेप पे लेके चले। इसी तरह से इस चीज का भी बड़ा तजर्बा हुआ जी मुझे जिंदगी में बारह, कि पीपल ब्रिंग इन लेट्स से 10 questions और वो 10 सवाल जो आते हैं, तो मुझे इस पे कोई ना तो मेरा ये क्लेम है कि वो सवाल एक एक करके सारों का जवाब मैं दे देता हूँ, ताहम हम एक जगह कोशिश करते हैं कि एक जगह रुक के पहले एक सवाल को हल करें और फिर आगे चलें, होना ये चाहिए, लेकिन हम करते ये नहीं है। हम करते ये हैं कि बात अगर समझ में नहीं भी आई तो हम अगले सवाल पर चले जाते हैं। वी आर क्विक इन डिसरिगार्डिंग एंड डिस्कार्डिंग द आर्गुमेंट्स बीइंग प्रेजेंटेड। तो इसमें दोनों को एज अ लिसनर भी एंड एज अ स्पीकर भी हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि अपनी बात को क्लियर भी करें और कॉन्वर्सेशंस में दूसरे पार्टिसिपेंट्स को बात पहुंचाना हमारा मकसद बन जाए। लिहाजा जब अगर कोई बातचीत हो रही हो तो कोशिश करें कि उससे हटकर आप इसी में गौर कीजिएगा कि हमारी जब कोई प्रेजेंटेशन होती है, हम जब कोई बातचीत करते हैं तो बजाय उस कॉन्वर्सेशन से या उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, हम बिल्कुल अनरिलेटेड क्वेश्चन भी उसमें ले आते हैं, अपनी जो जाती मसाइल जाती हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनके हवाले से भी बात हम करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे जेहन पे वो ज्यादा जाहिर है कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इस चीज को बस जेहन में रखिए कि हमने कोशिश ये करनी है। दैट इज वाई आई डिवेलप दिस हैबिट, आई एम ट्राइंग टू फॉलो इट, और इसमें कोशिश करें कि आप मेरी हेल्प करें सब लोग, कि अगर कोई सवाल आता है तो मैं उसके एंड पे ये पूछने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे याद रहे, इफ आई एम माइंडफुल इनफ एट दैट टाइम, कि क्या मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है, और अगर दे दिया तो फिर हम आगे चले, वरना इट इज क्वाइट पॉसिबल कि अगर जरूरत पड़े तो हम एक ही सवाल पर अपना सारा सेशन भी गुजार दें। दैट इज नॉट मच ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, हमारा कोई ये कोर्स नहीं है जिसे हमने खत्म करना है, इट कैन टेक इट्स ओन टाइम। आखिरी जो फोर्थ पॉइंट जो इस मामले में है वो ये कि यू नीड टू वॉच फॉर क्लूज। ये क्लूज जो हैं ये आपको वर्ड्स में मिलेंगे, इंटोनेशन में मिलेंगे, फेशियल एक्सप्रेशन में मिलेंगे, और अगर आपकी डायरेक्टली 1-to-1 गुफ्तगू हो रही है, इफ यू आर फिजिकली इन इन एन एनवायरमेंट जिधर के लोग मौजूद हैं, तो आपको बॉडी लैंग्वेज से भी मिलेंगे। यानी ये वाले क्लूज वो हैं कि जो आपको ये बता सकते हैं कि आपकी बात जो आपने फरमाई है उसका इमोशनल इम्पैक्ट क्या हुआ है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हमें हमेशा जरूर सेन में रखना चाहिए कि अगर किसी वजह से आप नहीं समझ पाए अभी, लेकिन अगर किसी बात ने दूसरे की इमोशंस को हिट किया है और वो नेगेटिवली या पॉजिटिवली उसकी इमोशंस हाई होने की आपको आसार नजर आ रहे हैं, तो कोशिश करें कि इसका पूछ लें, स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर एंड सीक क्लैरिफिकेशन फॉर एनी सरप्राइजिंग इमोशंस। आपका ख्याल ये था कि नहीं इस पर तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, ये जो मैंने बात अर्ज की है इसका कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया है, तो वो किस तरह समझी जा रही है बात, ठीक है जी, वो किस तरह देखी जा रही है कि जिसके नतीजे में ये आया है, ताकि आप अपनी बात को मॉडरेट कर सकें, ताकि आप अपनी बात को थोड़ा सा कम टोन में ला सकें, या यूं समझ लें कि अगर ये ना हुआ तो आगे की कॉन्वर्सेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगी। हम ये जो 4 points हैं हम इन पर, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्पेंट अबाउट 25 minutes, मेरी कोशिश ये होती है जी कि हम आधे घंटे से ज्यादा ऊपर ना जाएं, तो हम इधर रोक लेते हैं इंशाल्लाह, और आपके जो सवालात हैं उनसे शुरू करते हैं, एंड देन वी सी इफ वी कैन यू नो।
अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि यू नो आई एम टीचर, और टीचिंग के दौरान अक्सर डिफरेंट किस्म के जो इन्वायरमेंट्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं, वो देखने को मिलते हैं। समटाइम हमें ये पता चल रहा होता है कि स्टूडेंट जस्ट टीज करने के लिए कोई बात करना चाह रहा है, और उसका कंसर्न लर्निंग के साथ नहीं है, जस्ट क्लास के इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए, या समटाइम बच्चे अपने आप को क्लास में थोड़ा ज़रा मतलब शो ऑफ करने के लिए इस तरह के करते हैं। तो तब भी हमें इन रूल्स को उसी के अकॉर्डिंग ही के फॉलो करना चाहिए, या हमें उसको मतलब थोड़ा डिफरेंट वे से भी हम टैकल कर सकते हैं, लाइक हम उसके क्वेश्चन पे उसको स्नब कर सकते हैं, या हम उसको उसके पे बाद में मिलके उसको कह सकते हैं कि ये आपकी बात बिल्कुल इरेलेवेंट थी, एंड आई कैन गेस कि ये आप जो है ना जस्ट इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करने के लिए कर रहे थे। काइंडली जरा इसके हवाले से थोड़ा गाइड कर दें,
मैं
क्योंकि इस तरह
इसमें
के
से
प्रॉब्लम्स
जी
अक्सर
आई
जी
अंडरस्टैंड।
अक्सर प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, स्पेशली टीचिंग में जो है ना इस
असल में
तरह की
देखिए,
चीजें।
जो टीचिंग का जो प्रोफेशन इस वक्त हमने बना दिया है, पहले तो इसके बारे में थोड़ी सी बात समझ लीजिए। यानी एक टीचर जो है वो एक मिडिल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी पोजीशन पे एक काम कर रहे हैं, अगर आप इसको एक इंडस्ट्री में, क्योंकि स्कूल खुद अब एक इंडस्ट्री बन चुका हुआ है, तो उसको अगर आप समझें तो एक टीचर की तरफ से एक टीचर को सुपरवाइजर की जगह पे खड़ा करें, यानी उसका जो ताल्लुक है, यानी मैनेजमेंट के अगर वेरियस पोजीशंस बनाई जाएं तो उसमें आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि हर मैनेजमेंट की पोजीशन सिवाय सुपरवाइजर के वो ऐसी होती है कि जिस जिसके ऊपर भी मैनेजमेंट है और नीचे भी मैनेजमेंट ही है, लेकिन सुपरवाइजर एक ऐसी जगह है कि जिधर उसके ऊपर तो मैनेजमेंट है लेकिन उसके नीचे जो है वो मैनेजमेंट नहीं है, वो बच्चे हैं, या यूं समझ लें कि अगर आप इंडस्ट्री की मिसाल लें तो लेबर है, यानी जिससे अल्टीमेटली काम लेना है। प्रॉब्लम ये है कि जो जो आपने सवाल किया इसके अंदर कुछ कुछ इसकी एक बैकग्राउंड है, उसको हमें समझना चाहिए। यानी टीचर इन द करंट सिनेरियो इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। देखिए, टीचर का अब मसला ये नहीं रहा है कि उसको बात समझानी है, उसको अपने बच्चों के साथ, अपनी क्लास के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, और वो ये कि उसने कोर्स कंप्लीट करना है और बच्चों को इम्तिहानों की तैयारी करवानी है। बात समझना एक बिल्कुल इररेलेवेंट चीज बन चुका हुआ है टीचर के लिए। अगर आपके बच्चे बात बिल्कुल नहीं जानते, बिल्कुल ही नहीं जानते, लेकिन वो नंबर अच्छे ले सकते हैं बात को याद करके, आपके याद करवाने के नतीजे में, तो इसके नतीजे में यू आर अ वेरी सक्सेसफुल टीचर और आपको यू नो यू बी अवार्डेड इज। लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप बच्चे की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, बच्चे की जिंदगी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को थोड़ी सी वैल्यू दें, तो बेसिकली व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू डेवलप रिलेशनशिप्स। ठीक है जी, इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ये होगा कि मैनेजमेंट जो चाह रही है आपसे, उसका प्रेशर आप पर आएगा। ठीक है जी, बजाय इसके कि यू कैन यू नो डेवलप अ बेटर रिलेशनशिप, आपकी रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट बच्चों के साथ जो है वो आइंदा पूरे के पूरे साल पर अफेक्ट कर सकती है। यानी एक बात तो ये कि मुझे इस चीज से थोड़ा सा इतराज है। हम सब लोग जो हैं, मैंने ये सिर्फ बच्चों में नहीं देखा, ये बड़ों में भी देखा है कि समटाइम्स वी वुड लाइक टू जस्ट शो आवर प्रेजेंस। ठीक है जी, हम ये चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, हम ये चाहते हैं कि हमारी बात को तवज्जो से देखा जाए, उसको उसके ऊपर कान धरे जाए, उसका जवाब दिया जाए और रिस्पेक्टफुली दिया जाए। देखिए, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा नवीद साहब, कोशिश करके देखिएगा, मे बी इट इट विल
जी
टेक सम
सर,
टाइम। वो
जी जी
आपने
सर,
करना ये है कि बच्चों के साथ, बच्चों के ये सवालात जो हैं ये आप थोड़े अरसे के लिए रिस्पेक्टफुली हैंडल करें। ठीक है जी, एंड देन सेपरेटली आप ये बता सकते हैं कि मैं आपके इस सवाल का मोटिव नहीं समझ सका, यानी आपने अभी जज किया है बिकॉज ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ योर ओन बैकग्राउंड, कि ये बच्चा जो है ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए या अपनी अपने आप को नुमाया करने के लिए एक सवाल कर रहे हैं, जबकि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि उसके जहन में कुछ और हो। हम इंसानों को इतनी अच्छी तरह से इतनी जल्दी नहीं जान पाते हैं, अगरचे हम जनरलाइज करने में बड़े तेज होते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि आप इसकी कोशिश करके देखिएगा कि लोगों को
राइट
ज्यादा रिस्पेक्टफुली हम उनको जवाब देते हैं। एक दो क्लासेस में हम दो चार क्लासेस में हम इस टारगेट को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि हमने कोर्स कवर करना है, बल्कि इसकी बात करते हैं कि हमने अपने बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स में आना है और उसके नतीजे में एक इन्वेस्टमेंट करनी है जो आइंदा फायदेमंद होगी, बच्चों की जिंदगी के लिए फायदेमंद होगी, सिर्फ उनके रिजल्ट्स के लिए नहीं। रिजल्ट्स तो आखिरी 10 दिन में भी मेहनत करके हासिल किए जा सकते हैं। प्रॉब्लम असल में ये है कि जो चीज हम बच्चों को स्कूल में दे सकते हैं हम उसको नहीं देते, इसलिए कि हमारा जो कंसर्न है वो सारे का सारा एक तरफ फोकस हो जाता है। तो आई एम नॉट सजेस्टिंग कि आप अपने आप को प्रोफेशनल किस्म के प्रेशर्स में डालें, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा कि जब एज अ टीचर आपकी जो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए वो लाजमन ये होनी चाहिए कि हमने बच्चों का फायदा करना है। ये नहीं
सर,
होनी चाहिए कि मैंने अपनी अपनी असेसमेंट्स को बेहतर करना है। खुदा ना खास्ता मैं ये मतलब नहीं है कि आप ये है खुदा ना खास्ता, दैट इज नॉट व्हाट आई मीन, लेकिन ये जो सवाल जब पैदा होता है, सवाल यहां से पैदा हो सकता है, मैं इसको सिर्फ सेफ गार्ड करना चाह रहा हूँ। मैं अगर कोई मजीद सवाल हो तो आप कर सकते हैं जी।
नहीं, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी पिक्चर जो है ना डेवलप की है, और एक्चुअल में ऐसा ही है कि हम लोग, हमारे पास एक मतलब ऑलरेडी डिफाइंड टाइम होता है, डेली बेस पर लेक्चर्स डिवाइडेड होते हैं, हम उसको भी हमें देखना होता है और इन रूल्स को भी फॉलो करना होता है, और इवन के हमें बच्चों के बिहेवियर्स को भी साथ में टेकल डाउन करना होता है, और इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम 40 या 45 मिनट्स में अपने डेली वर्क को भी कंप्लीट करें, और साथ में इन चीज़ों को भी हम जो है ना समटाइम ओवरलुक हो जाती हैं, समटाइम उसमें कमी हो जाती है,
ट्रेनिंग के लिए कोई काम करना चाहिए। असल में जिस चीज की ट्रेनिंग होनी चाहिए वो पूरे का पूरा आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जिसमें ओनर से लेके मैनेजमेंट तक सबको शामिल होना चाहिए। अदरवाइज टीचर्स के ऊपर खामखा का एक प्रेशर है जो कि हमने अनड्यूली और सुपरफिशियल रिजल्ट्स को हासिल करने के लिए लगाया हुआ है।
एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू,
यू मोस्ट वेलकम जी।
अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब, आपकी तबीयत कैसी है?
जी जी शुक्रिया।
मोहित साहब, माय क्वेश्चन रिलेट्स टू कन्वर्सेशन, इट इज रिगार्डिंग सोशल कन्वर्सेशन एंड आल्सो इट ऑल also relates to our cultural pattern. Moisab, in our part of the world, there's a terrible stigma against divorcees. A young divorced woman finds it hard to get married again. In my own personal experience, a young divorced girl would receive proposals the minute the boy's family finds out that she's a divorcee, they back off. I actually had someone talk of a nice proposal from a widower with 2 teenage children. When I reacted, she said, she's a divorcee, you expect a bachelor to marry her. My question is, where did these traditions come from? They're not from Islam. Are they Hindu customs? Are you expected to stay in a bad marriage for the rest of your life because of this type of conversations, when you need to talk to people to see if they can assist you? So this is a personal experience, so could you try and guide me regarding these type of conversations? Shukriya.
ek to cheeze is mamle mein dekhiye, ek to ye ki ye kehna to mujhe nahi maloom ki theek hoga ya nahi ki Hindu culture ya nahi, lekin ek to aspects ko main chahta hu ki aap zarur zehen mein rakhein. Hamara jo hum पाकिस्तानी मुसलमानों का जो एक डायलेमा समझ लें आपके है, वो ये है कि हमारा जिस मज़हब को हम मानते हैं वो अरबिक अरब कल्चर का एक नुमाइंदा है, और जिस सोसाइटी में हमने आंख खोली है और जिस कल्चर के अंदर हमने परवरिश पाई है वो असल में हिंदुस्तानी कल्चर है, चाहे उसको आप हिंदू कल्चर कहें या हिंदुस्तानी कल्चर कहें, लेकिन कल्चर basically is more of a, मतलब मैं उसको इस्लामिक कल्चर नहीं कह रहा हूँ कि जो अरब कल्चर है, मैं उसको अरब कल्चर कह रहा हूँ। इट हैज मोर टू डू विद द ज्योग्राफी रादर देन एनीथिंग एल्स। रिलीजन डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन कल्चर, बट द थिंग इज दैट ये जो वैल्यूज हैं, कि क्या अच्छा है क्या गलत है, क्या डिवोर्सी की क्या पोजीशन है, विडोअर विडो इनकी क्या पोजीशंस होती हैं, ये असल में सोसाइटी के अंदर। दूसरी चीज जो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो और बड़ी अनफॉर्चुनेट है, वो हमारी टेंडेंसी ऑफ जनरलाइजेशन है जी। यानी देखिए ये जो जनरलाइजेशन है, अभी नवीद साहब ने जो सवाल किया था, ये बेसिकली एक जनरलाइजेशन की टेंडेंसी से निकला हुआ सवाल होता है। यानी नवीद साहब इज एन एक्सपीरियंस टीचर, ही हैज अ लॉट ऑफ इयर्स बिहाइंड हिम, और इन्होंने ये देखा है ओवर द इयर्स, ना सिर्फ अपनी टीचिंग में बल्कि अपनी स्टूडेंट एज में भी ये देखा है कि लोग इस तरह करते हैं, और फिर ये जनरलाइज कर दिया हमने कि ये इसके नतीजे में आज जो मेरे साथ हो रहा है वो भी असल में इसी कैटेगरी की चीज है। ये टेंडेंसी अपनी जगह पे एक नेचुरल टेंडेंसी है, और इसके अंदर नेचुरल से मेरी मुराद है कि ये इंसानों के अंदर ये पोटेंशियल है कि इस टेंडेंसी को पैदा करें। नंबर दो जो एस्पेक्ट है वो ये कि जब तक कि आप इसके बारे में कॉन्शियस नहीं होंगे तो आप ये पैदा कर लेंगे। अगर विडो के बारे में एक टेंडेंसी पाई जाती है सोसाइटी में तो वो हर एक पर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, एवरी विडो एवरी डिवोर्सी विल फॉल इन द सेम कैटेगरी। डिवोर्स होने ना होने के देयर कैन बी 1,000 डिफरेंट रीजंस, 1,000,000 डिफरेंट रीजंस, लेकिन हम डिवोर्सीज को या डिवोर्स्ड विमेन को जो मामला करते हैं वो नहीं करते जो डिवोर्स मेन को करते हैं, वो स्टिग्मा जिसकी आप बात कर रही हैं। और ये चीज जो है ये भी अगेन एक जनरलाइजेशन भी है और एक सोशो कल्चरल आपकी ट्रेडिशन के अंदर खड़े होकर मामला हुआ है। इसका जो ये जो चीजें होती हैं जी, इनका हल बेसिकली एजुकेशन में भी है और ट्रेनिंग में भी है। हम इस चीज को लोगों को, और कॉन्वर्सेशन कैन रियली हेल्प व्हेन यू आस्क पीपल अबाउट हाउ दे हैव अराइव्ड एट दिस कंक्लूजन व्हिच यू हैव जस्ट रिफर्ड टू, दैट पीपल डिवेलप अ वेरी अवर्स ओपिनियन टुवर्ड्स डिवोर्स्ड वेमेन बट नॉट सो अबाउट डिवोर्स मैन फॉर इंस्टेंस। हाउ कम, Why is it not possible that the divorce actually occurred due to a man's problems rather than a woman's problem? So, जब आप इन conversations को अपनी अच्छी societies में आम करने की कोशिश करें, और वो पहले हम करते थे individuals की basis पर, हम इंसान एक दूसरे से बातें बातें किया करते थे और इसके नतीजे में opinions form होती थी, opinions develop होती थी, opinions evolve करती थी। लेकिन अब क्या होता है कि मीडिया जो है हमारा वो एक बहुत बड़े लेवल पर ये काम कर रहा होता है, और उसका जो टारगेट है, मैं ये आपको जाती एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं जी, और आप अगर मीडिया को देखें तो उनके भी उनका टारगेट बेसिकली ऑडियंस है कि वी वुड लाइक टू हैव मोर ऑडियंस फॉर आवर प्रोग्राम। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से एक बहुत बड़े मीडिया ओनर से बात करते हुए मैंने जब ये कहा कि आप मीडिया जो है सोसाइटी की करेक्शन का काम कर सकता है, तो उन्होंने मुझे उसके जवाब में ये फरमाया, और बिल्कुल यानी किसी लगी लिपटी के बगैर फरमाया कि मेरा तकरीबन हर महीने का इतने करोड़ रुपया खर्चा होता है, मैं सोसाइटी की करेक्शन के लिए अगर इस तरह की प्रोग्राम्स करना शुरू कर दूं तो उसके नतीजे में मेरा टेलीविजन चैनल बंद हो जाएगा। तो अनफॉर्चुनेटली एट द कॉस्ट ऑफ रूइनिंग द सोसाइटी समटाइम्स we are actually giving the values or we are not correcting the values which need to be corrected. हम उनको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हो सकता है कि हमें जो प्रोग्राम में जो स्पीड है, हमारे प्रोग्राम में जो आर्गुमेंट का कल्चर है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करने का और एक दूसरे के साथ लड़ाई करने का और अपनी बात को ऊपर करने का, ये ना करना पड़े, हम एक दूसरे को समझाने की बात कर रहे हो। ये कॉन्वर्सेशन जो है इसी वजह से मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस देता हूं कि ये इसमें जो असल टारगेट है वो ये है। आई आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन जी, प्लीज लेट मी नो इफ इफ आई हैव सक्सीडेड, अदरवाइज यू कैन आस्क।
My concern is that this lady that I'm talking about is a professor. She had been teaching for the last, I think, 15, 20 years in Islamabad. Learned person. I was very naive compared to her, and I expected her that she would understand the problem I was facing. Instead, she just wrote it off and she said that, you know, which world do you live in? तो इस चीज पे मुझे अफसोस हुआ कि आई जस्ट वेंट फॉर गाइडेंस, यू नो, आई सेड दिस इज व्हाट्स हैपेंड इन द फैमिली, एंड शी सेड योर एक्सपेक्टेशंस आर बियॉन्ड एनीबॉडीज अंडरस्टैंडिंग, यहाँ ये नहीं होगा, दिस विल नॉट हैपन, यू बेटर एक्सेप्ट इट के द 19 ईयर ओल्ड गर्ल यू आर टॉकिंग अबाउट विल गेट अ प्रपोजल फ्रॉम मे बी अ 50 ईयर ओल्ड मैन विद टू किड्स, एंड दिस इज द वे the world, the life is in Pakistan. That is my only concern. It really made me feel very dejected.
I think it's up to you. I mean, I don't know why are you giving so much importance to a person's opinion. It is just an opinion, and she is not a person who controls the future for anybody. अल्लाह ताला से उम्मीद रखें, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा मामला हो जाएगा. ये जो आपने सारी बात फरमाई है, इससे कोई चीज इतनी सीरियसली किसी की राय को नहीं लेना चाहिए कि जिसके नतीजे में यू फील डिजेक्टेड. जस्ट हैव वेरी अ लॉट ऑफ होप एंड यू शुड रीकंसिडर योर ओन ओपिनियन. इफ यू होल्ड दैट यू नो इन अ केस ऑफ डिवोर्स इट कैन बी एनीबडीज फॉल्ट एंड वी स्टिल हैव अ चांस, बोथ मेन एंड वुमेन हैव अ चांस to develop a good relationship with somebody else and enter into a lifelong marriage. I think it's equally true. I mean, you can hold that opinion. Why don't feel dejected? It's an individual's opinion.
I understand. Bahut bahut shukriya. Thank you.
You're most welcome.
Assalamu alaikum, sir.
Wa alaikum assalam. Khairiyat se aap?
Alhamdulillah. सर, आपने अभी जो गाइडलाइंस बताई हैं उसमें एक मुश्किल जो मुझे भी और बाकी लोगों को भी पेश आई कि जब हमारा किसी इंटीमेट रिलेशनशिप में इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है और अगर उसमें बार बार किसी से मामला खराब हो रहा है, तो आपके मुंह से भी पहले ये बात निकली कि इट्स नेचुरल कि हम उसको जज करने लग जाएंगे और पास्ट एक्सपीरियंस की रोशनी में उसे देखेंगे. एक तो ये भी बताएं कि क्या ये नेचुरल है या नहीं है, और दूसरी चीज ये कि जब मैं इंटेंशन कैसे पॉजिटिव करूं जब मेरा एक्सपीरियंस ही उससे खराब है और 10 दफा हो चुका है, 20 दफा. मैं आउटसाइडर्स की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ अपने घर में जब हम बहुत करीबी लोगों से, इन लॉज हैं, घर वाले हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, ये लोग किस तरह पास्ट एक्सपीरियंस से खुद को डिटैच करें.
एक चीज तो मैं आपसे पहले वो उसको एक्सप्लेन करता हूँ जी, कि जो आपने फरमाया कि क्या नेचुरल है या नहीं. इंसान के अंदर जो ये मेमोरी है, मेमोरी को स्टोर करना, मिसाल के तौर पर इंसान ने आग की तरफ जब हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ जला, ये मेमोरी स्टोर होना जो है ये उसके लिए एक बहुत बड़ी नेमत है. ठीक है जी. यानी ये जो पैटर्न्स हम अपने अंदर फॉर्म करते हैं, हम ये देखते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये कुछ चीजों में हमारी लर्निंग को, बजाय इसके कि हम हर दफा यूँ समझ लें कि आप दरवाजा खोलते हैं अपने घर का एक खास तरह से मोड़ के उसके नॉब को खोलते हैं, आपको अगर ये मेमोरी खत्म हो जाए तो आप सोचिए कि आपके लिए तो दरवाजा खोलना ही जो है वो एक मुसीबत बन जाएगी. तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल इन ह्यूमंस दैट वी स्टोर मेमोरी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हम इंसानों के मामले में भी ये करने लग पड़ते हैं. यानी इंसान चीजें नहीं होती और इंसान एक ही मोटिव से हर वक्त मामला नहीं कर रहा होता. इंसान कई दफा अच्छे मोटिव से भी मामला करता है, कई दफा बुरे मोटिव से भी करता है. आपके कुछ तजुर्बात हैं जिसकी वजह से आपने उनको स्टोर कर लिया अपने जहन में कि ये इंसान इस तरह से बिहेव करता है. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जब भी बिहेव करे वो उसी तरह से करे. हम कोशिश कर सकते हैं अपने इस कंसर्न को उसके साथ बयान कर सकते हैं कि मेरा पिछला तजर्बा आपके साथ ये रहा है एंड इस मामले में थोड़ी सी रिजर्वेशन फील कर रहा हूं मैं बात समझने में. मुझे इसको अगर क्लियर कर दे तो इसका हमारे इस रिलेशनशिप में भी और हमारी बात में भी बहुत फायदा होगा. आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट. ठीक है जी. कि अगर मैं इसको बयान कर दिया करूँ कि मैं अगर कोई कंसर्न है मेरे तो उनको मैं लोगों के साथ शेयर कर लूं और उसके नतीजे में ये देखूं कि क्या कोई फायदा हो सकता है. कुछ लोगों के साथ नहीं होगा जी. यानी ये बिल्कुल क्लियर है कि कुछ लोगों के साथ नहीं होगा. वो मैंने इसी वजह से बात यहाँ पर आगाज में गुजारिश की थी कि हम इसकी कितनी ही ख्वाहिश रखते हों कि हम दूसरों की लर्निंग में कॉन्ट्रीब्यूट करें, इसके लिए जरूरी है कि दूसरा भी ये चाहता हो. वो अपने जहन को खुला रखेगा तो ऐसा हो सकेगा। मुझे इसका कोई फायदा नहीं होना। देखिए, इस चीज को रिकग्नाइज कर लूं मैं अगर कि किसी ने अगर बात नहीं समझनी तो मुझे उसकी इंटेंशंस को जज करने का कोई फायदा नहीं होना, लेकिन नुकसान हो सकता है। यानी क्यों, क्या नुकसान हो सकता है कि कल को जिस वक्त वो ये चाहे कि मैं, हमारा रिलेशनशिप बेहतर हो, वो ये चाहे कि बात हम कम्युनिकेट करें, उस वक्त हो सकता है कि मैं अपने एक प्री डिस्पो यानी प्री कंसीव्ड आइडिया की वजह से उसके लिए अपने दरवाजे ना खोलूं और ये नुकसान जो है ये मुझे हो जाएगा। तो रादर देन गोइंग थ्रू दैट, मेरा ख्याल है कि इट्स अ बेटर आइडिया कि हम अपने कंसर्न्स बताएं और ये देखें कि क्या तरीका हो सकता है कि हम इन रुकावटों के अंदर रहते हुए अपनी अपनी कॉन्वर्सेशन को बेहतर कर सकते हैं। सोबिया, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया जी, आप प्लीज सब
आपकी
लोग
बात सुनकर अंदाजा हो रहा है कि ये बड़ी अच्छी और इजी सजेशन है, बट आई डोंट नो कि क्यों नहीं जहन में ख्याल आया या आता कि हम लोगों से ये कह दिया करें, तो हम तो वाकई कह ही नहीं ये बातें कि दफा भी ऐसा हो गया था तो हम
इसकी,
ब्रेक ले लेते।
इसकी एक वजह है जी, यानी आमतौर पर ये कहने का मतलब ये होता है कि जब कॉन्वर्सेशन हो रही हो तो आपने टॉपिक को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, और ये टॉपिक को चेंज करना जो है ये उस वक्त हम उस हीट ऑफ द मोमेंट में ना हम खुद तैयार होते हैं ना शायद दूसरा तैयार हो रहा होता है। यानी हम कोशिश करते हैं कि बात को अपने इस रिलेशनशिप, इस बात को जो हम कर रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप की इन्वेस्टमेंट के तौर पर करें। हमने अपने रिलेशनशिप को बेहतर करना है, पिछले भी एक्सपीरियंसेस हैं हमारे और ये एक्सपीरियंसेस इंसानों के साथ हैं, और इंसानों के साथ मामला ये नहीं होता। देखिए, आग कहीं भी होगी वो आपको जलाएगी, इंसान एक ही बात हो सकता है 10 डिफरेंट इंटेंशंस के साथ कर दे, और वो हम चूंकि एक खास पैटर्न में खड़े होते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि हम उसको डिफरेंट कैटेगरीज में प्लेस ना कर पाए। तो इसका फायदा हमें इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि अपने रिलेशनशिप से हासिल करनी है।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
वेलकम जी।
सर, मैं ये जानना चाह रही थी कि अगर हम दो अफराद आपस में बात कर रहे हैं और बात कर अच्छे से बात हो रही है, लेकिन जब एक फर्द के पास, वो मैं हूँ या सामने वाला है, उसके पास दलील खत्म हो गई है, और आपको पता है ज्यादा बात हम इसी बिहेव पे कर रहे होते हैं कि मैं ही सही हूँ, इसी पे दलाल दे रहे होते हैं, तो जब दलील की बुनियाद खत्म हो जाती है तो फिर जातियात पर आ जाते हैं लोग कि आप खुद ठीक नहीं हो, मतलब आपका लिबास, आपने नेल रखे हुए हैं या फैशन है या जो, उस सिचुएशन में इंसान खुद को कैसे मतलब बात के लिए आमादा करे। मुझे ज्यादातर इस में बहुत ज्यादा मतलब फेस मुझे ये सिचुएशन करनी पड़ती है, खासकर दीन के मामलात में, क्योंकि मैं पर्दा नहीं करती या मतलब इस तरह के फैशन जो भी है दुनिया निज़ाम उसको ऑन करके बात करती हूँ सामने वाले से, तो सामने वाला उस वक्त नहीं बात सुनना चाहता जब उसके पास दलील खत्म हो जाती है, फिर वो ज़ातियात पर आ जाता है। इसमें प्लीज मुझे गाइड करें, फिर कैसे करना चाहिए इस सिचुएशन में, खुद को कूल और बात को जारी रखें या क्या करें।
नहीं, ये आपने इस पूरी बात का जो जिस तरह से प्रेजेंट किया है, इसमें अगर आप इस चीज को अपने जहन में रखें व्हाइल टॉकिंग टू अदर्स कि ये जब इस तरह से बात होती है तो ये पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कोशिश ये कीजिए कि एक तो इस चीज को समझ लें कि जब इंसान, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर दफा ऐसे होगा, लेकिन कुछ चीजें जहन में रखनी चाहिए हमें। यानी इंसान महज लॉजिकल आर्गुमेंट से बात नहीं मानता है जी, ठीक है जी, ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ लें। इंसान की इमोशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमें कई दफा बात को, बात के खिलाफ कोई चीज नजर नहीं आ रही होती, लेकिन हमारी इमोशन इजाजत नहीं दे रही होती मानने को। तो और इसका कोई हल नहीं है, इसका हल इंसान अगर चाहेगा तो खुद निकालेगा, और वी हैव टू कन्फ्रंट दूसरे। जब एक आदमी को ये सिचुएशन पेश आ जाए तो हम उसकी हेल्प ये कर सकते हैं कि हम बात को थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दें, डिफर कर दें, उस पर अभी कोई फैसला ना करें। जो आपने एक इशू रेज किया, एक तो ये कि खुद हम इस मामले में ऐसा कभी ना करें, ठीक है जी, इट वी शुड नेवर गेट पर्सनल। अपनी बात को अगर आप महसूस कर रहे हैं कि मेरी बात की कमजोरी आ गई है, तो मैं कोशिश करूं कि दूसरे के बारे में पर्सनल और उसकी गलतियों को नुमाया करके ये बताना कि तुम कोई अच्छे इंसान नहीं हो, ये तो बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए। और अगर दूसरा ये कर रहा है تو اس کو ایک انسانی غلطی سمجھ کر اگنور کر دیں اور بات ختم کر دیں. یعنی مسکرا کے بس آپ نے خود اس کو جس پیرائے میں بیان فرمایا ہے, یعنی ایک آدمی کو جب بات سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن اس کی انا یا اس کی بڑائی جو اس کی نظر میں ہے وہ اس کو ماننے نہیں دے رہی. ایک بات تو یہ کہ یہ خود اس کے اندر ایک نوعیت کی ججمنٹ انوالوڈ ہے. مے بی اس کو واقعی اس طرح کے سوالات ہوں, لیکن وہ سوالات وہ ہیں. میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں بات کو واضح کرنے کے لیے. ہم عام طور پر دوسرے لوگوں کو اپنی اوپینین پر جج کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے نیلز بڑھائے ہوئے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, یا جو بھی you know this is what happened to me in at the end of one of the presentations. ایک سیشن میں تھا میں, اور اس کے اینڈ پر یہ بات چیت ہوئی اور بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ گفتگو. مجھے ایک صاحب ملے, میں باہر جا رہا تھا کمرے سے اور تقریباً سارا ہال خالی ہو چکا ہوا. جب باہر جا رہا تھا تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے آپ کی یہ ورک شاپ اٹینڈ کر کے بڑا مزہ آیا اور میں نے بڑا سیکھا, اور پھر ساتھ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کی داڑھی ٹھیک نہیں. بس یہ بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی داڑھی ٹھیک نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ کا بہت شکریہ یہ شیئر کرنے کے لیے, یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ابھی بات فرمائی ہے کہ میری داڑھی ٹھیک نہیں ہے, یہ آپ نے کس کی رائے بتائی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری امت کے سارے بزرگوں کی. میں نے کہا نہیں, اس وقت امت کے سارے بزرگ یہاں نہیں ہیں, یہاں پر دو لوگ ہیں, ایک میں ہوں اور ایک آپ ہیں. آپ میری رائے پر کہہ رہے ہیں یہ کہ یہ داڑھی ٹھیک نہیں ہے, یا اپنی رائے پر کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ کہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا تو میں نے تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جو جواب دینا ہے وہ آپ کی رائے پر نہیں دینا, وہ اپنی رائے پر دینا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنی رائے پر آپ عمل کریں, دوسروں کو جج نہ کریں. ٹھیک ہے جی, آئی وڈ سجیسٹ کہ اس چیز کو, یہ ضروری نہیں کہ آپ ہر موقع پر یہ لوگوں کو کمیونیکیٹ کریں, لیکن اس چیز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں دیٹ پیپل آر ہیو اے ٹینڈینسی کہ وہ اپنی رائے کی بیسس پر آپ کو جج کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, وہ اپنی رائے جس کو وہ ضروری سمجھتے ہیں, جس کو وہ دین کا حکم سمجھتے ہیں, وہ آپ سے یہ پوچھنا گوارا نہیں کریں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ایسے بھی ہوتے ہیں انسان. میں نے ایسا نہیں بننا, ظاہر ہے کہ میں اس رویے کو اچھا نہیں سمجھ رہا ہوں تو میں ایسا نہیں کروں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ایک خوبصورت نظام ہے جی. کئی مرتبہ ہم لوگوں کی اچھی کوالٹیز کو دیکھ کر تو یہ اپنے اندر یہ ایسپریشن پیدا کرتے ہیں کہ میں ایسا بنوں, اور کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسی کوالٹی لوگوں کی نظر آتی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ایسپریشن پیدا ہو جاتی ہے میرے دل میں کہ میں ایسا کبھی نہ بنوں. تو اس کو اختیار کر لیں اور اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ اس نے ایک آپ کو سبق دیا اور مجھے سبق دیا.
بے شک ایسا ہی ہے سر. بس میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ زیادہ تر یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہوا ہے کہ ہم سامنے والے کی داڑھی پہ, اس کے لباس پہ جج کرتے ہیں, بے شک وہ صحیح بات ہی کیوں نہ کر رہا ہو. یہ کیا ذہن, کیسا ذہن ہوتا ہے جو ان چیزوں کی طرف جاتا ہے؟
وہ وہی ذہن ہے جی.
جی جی
جی, I'm so sorry جی, یہ وہی ذہن ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا شروع میں, کہ یہ جو ہم ساری بات کر رہے ہیں having good conversations, یہ بیسیکلی ایک پورے کے پورے سوشل پیراڈائم کے خلاف ہے بات. ہمارا جو سوشل پیراڈائم ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ گفتگو اصل میں ایک مقابلہ ہوتی ہے, اور جو جیتے, جس کے پاس بات جس کی اسٹرانگ ہو وہ جیت رہا ہے, اور جس کی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہی ہے وہ ہار رہا ہے. میں اصل میں اپنے سارے سننے والوں کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس پیراڈائم سے نکلنے کی کوشش کریں. یعنی اگر آپ کی بات غلط ثابت ہو رہی ہے تو اس کو سیلیبریٹ کریں, اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا کہ میں اپنی بات کو ٹھیک کر سکتا ہوں. اور اگر نہیں ہو رہی, اور اگر آپ کی بات جو ہے وہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں اور وہ مانی نہیں جا رہی, تو یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ میں اور کیسے بہتر طریقے سے اس کو بیان کروں, اس کے دوسرے سننے والے کے اگر کوئی سوالات ہیں تو میں ان کو کیسے, ہاؤ کین آئی بی مور افیکٹو ان گیونگ آنسرز ٹو دوز کوئسچنز, اور مے بی دوز کوئسچنز آر سو امپورٹنٹ دیٹ مائی اوپینین شوڈ بی ریویوڈ, مجھے کس طرح سے ریویو کرنا چاہیے. آپ نے الٹیمیٹلی اس دنیا سے اس بیسس پر کامیابی نہیں حاصل کرنی کہ آپ نے کتنی آرگومنٹس جیتی تھیں اور کتنے لوگوں کو قائل کیا تھا. آپ نے, آپ کی اور میری کامیابی اس میں ہے कि हमने किन किन मौकों पर दूसरों की बात से सबक हासिल किया और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए इंशाल्लाह।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।
यू मोस्ट वेलकम। ये सर मेरा ख्याल है ये कह रहे हैं कि घर में बाहर की तरह अखलाक अच्छे कैसे मेंटेन रखे कॉन्वर्सेशन में। आप बाहर जो रखते हैं वो ये बता रहा है कि ये पोटेंशियल आपके अंदर है कि आप रख सकते हैं, और इसको सिर्फ इतनी बात है कि वो जो अब आज तक आप कर रहे थे लोगों को खुश करने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। आपने ये मेंटेनेंस जो करनी है ये अल्लाह को खुश करने के लिए करनी है। अब अल्लाह ताला को खुश करने के लिए जो मामला भी हो रहा है, चाहे वो किसी अजनबी की तरफ से हो रहा है, चाहे अपने अपने बेटे की तरफ से हो रहा है, चाहे अपनी बेगम या अपने शौहर की तरफ से हो रहा है, आपने अल्लाह ताला को रिस्पॉन्ड करना है। इस चीज को अपने जहन में ज्यादा से ज्यादा जगह देना शुरू कर दें। इट इज नॉट अबाउट बींग विनिंग पॉपुलैरिटी विद पीपल, इट इज अबाउट बींग अ बेटर ह्यूमन बींग एंड द टाइम दैट यू हैव। इस वक्त दुनिया में जो आपके पास टाइम है वो मालूम नहीं कब खत्म हो जाएगा, ये टाइम लिमिटेड है, और जिस वक्त अल्लाह ताला का फैसला आ जाएगा तो इसमें मजीद एक सेकंड की मोहलत और नहीं मिलेगी। इसको यूटिलाइज करते हुए मैंने अपने आप को बेहतर बनाना है। इस बेहतरी के मोटिव से अप्रोच कीजिए, यानी जो हम अच्छे अखलाक दूसरों के साथ रखते हैं वहां पर अगर वो मैं अपने अपने घर वालों और अपने प्यारों के साथ और अपने रोज के मिलने वालों के साथ नहीं रखता हूँ तो इसका मतलब है कि वो एक मास्क है जो मैं पहनता हूँ, और उस मास्क को मैं अल्लाह ताला के हुजूर नहीं पहन सकूंगा। ठीक है जी, वो कहा ना सूरह हक्का में कि पयौमा यदिन तुरदून अला तख्फा मिनकुम खाफिया, कि तुम उस दिन कोई छुपी हुई चीज भी छुपी हुई नहीं रहेगी, तुम उस दिन जब पेश किए जाओगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। ठीक है जी, लाइक सिबलिंग से क्योंकि उनसे कैजुअल होते हैं गुस्सा भी आ जाता है, या सिबलिंग आपको जान के ट्रिगर करते पुरानी हरकत का जिक्र कर, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जी। और ये इसको मेरी कोशिश ये होती है एज वी प्रोग्रेस इन इन सेशन में भी आप हम इंशाल्लाह इनके ऊपर इसके ऊपर ज्यादा डिटेल से बात भी करेंगे, लेकिन इस चीज को जेन में रखिए, ये सवाल आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस सवाल को अपने सामने रखिएगा हर सेशन में कि मैंने अपने अंदर ये जो क्वालिटीज पैदा करनी है ये वाकई मेरे क्वालिटीज होंगी, ये कुछ लोगों के लिए नहीं होंगी, मैंने कोई पॉपुलैरिटी का कॉन्टेस्ट नहीं जीतना है, मैंने असल में अपने आप को खुदा के हुजूर जाने के लिए तैयार करना है। जब आप ये करते हैं और जब आप ये करेंगे तो इसके और इसके बारे में कॉन्शियस हो जाएंगे। तो ये जो जो आपने लिखा कि बहन भाइयों की तरफ से हमें इस तरह के मौके आ जाते हैं कि वो ट्रिगर भी कर रहे होते हैं, तो वो जो ट्रिगरिंग सिचुएशंस हैं वो कई दफा हमारे लिए हम उसका शुक्र अदा करेंगे कि वो हमें मौका मिल रहा है कि हम अपने आप को बेहतर करें। और एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि आप जो कुछ हैं इस वक्त, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपके बड़े, जो कुछ हैं वो उस पर कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस आपका भी है, और उस इन्फ्लुएंस को मैंने और आपने बेहतर करना है जी। मेरा हर बिहेवियर किसी ना किसी के सामने हो सकता है, ऐसे किसी के सामने हो सकता है जिसको मैं जानता भी ना हूं, मैंने अपने आप को उसके उसके लिहाज से या उसके लिए एक अच्छा इन्फ्लुएंस बनाना है, बिकॉज दैट विल बी वो जिसको वो कहते हैं ना जी कॉन्टिन्यूइंग परपेचुएटिंग चैरिटी है कि सदका जारिया है। अगर मैं ये कर पाऊं कि हो सकता है कोई मुझे देख के कोई अच्छी चीज सीख ले या मेरे किसी रवैये से वो अपने लिए मोटिवेट हो जाए कि मैंने भी ये इख्तियार करना है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे किसी बुरी बात को देखकर वो मोटिवेट हो जाए कि मैं भी आइंदा ये करूंगा। इसकी बड़ी छोटी सी छोटे से लेवल में आपको एक मिसाल देता हूँ जी। आई हैव सीन दिस हैपनिंग मेनी टाइम्स कि अगर आप किसी लाहौर में इधर उधर पाकिस्तान में जिधर ये सिग्नल्स होते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स उधर खड़े हैं तो आप ये देखिएगा कि आप खड़े हैं ट्रैफिक सिग्नल पे लाल बत्ती पे तो कुछ लोग आपको देख के खड़े हो जाएंगे। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो अपने अंदर ये उनके अंदर रियलाइजेशन पैदा हो जाए कि मैं अब आइंदा मैं भी एक कानून की पाबंदी करने वाला आदमी बनूंगा, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। और कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग खड़े हैं और मैंने सिग्नल तोड़ दिया और आपके पीछे पीछे आपके देखा देखी 10 लोगों ने और भी तोड़ दिया, तो ये दिस इज समथिंग विच हैपन्स विदाउट नोइंग, हम जानते भी नहीं कितने लोग हमारे पीछे जो है वो अच्छाई या बुराई को इख्तियार कर लेंगे। تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ کانشیس کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ یہ حاصل ہو جائے گا جی, اٹ از ناٹ امپاسبل.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم کسی ایسے شخص کو دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسا بندہ ہے جو یعنی اس کی زندگی میں حالات ایسے ہوں کہ وہ صبر کر رہا ہے, جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں وہ چیزیں اس کے اندر انکلکیٹ کیا ہوا ہے اور صبر کر رہا ہے ہر قدم پر, حالات جو پیش آ رہے ہیں ان پر وہ صبر کر رہا ہے, خاموشی کے ذریعے صبر کر رہا ہے یا پازیٹیوٹی کے ذریعے ڈیل کر رہا ہے یا گائیڈنس کے ذریعے ڈیل کر رہا ہے چیزوں کو, تو مطلب وہ شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ آخرت کے لیے بھی یہ بہتر ہے اور یہ کہ یہ آزمائش ہے, ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے وہ اپنے اطراف میں جو حالات ہیں ان پر وہ صبر کر رہا ہے ہر لمحے اور کافی اچھی طریقے سے اس کو جس سچویشن کو ڈیل کر رہا ہے, لیکن دل میں دل پر جو باتیں اثر انداز ہوتی ہیں, جو افسوس ہوتا ہے, جو حسرتیں پیدا ہوتی ہیں یا جو درد ہوتا ہے اس میں اس کا جو وقت لگتا ہے, تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جس جو وقت لگ رہا ہے اس وقت کو وہ کس طریقے سے, یعنی اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے, لیکن جو وقت اس میں لگ رہا ہے اس کو وہ کیسے یعنی اپنے 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 کاموں کے لیے استعمال کرنے کے لیے, اس کے لیے بہتری کے لیے راستے نکالے. اور دوسرا یہ کہ کیا ایسی چیزوں سے یعنی قطرہ قطرہ چیزوں کو پینے سے کیا ذہنی صلاحیتوں پر بھی اثر پڑتا ہے, جسمانی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے, اور اگر پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
میں آپ کی بات جو سمجھا ہوں میں پہلے اس کو کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کی, اگر غلطی ہو تو مجھے پلیز ٹھیک کر دیجیے گا. آپ کے سوال سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سچویشن, ایک انسان کو جو سچویشنز پیش آ رہی ہیں وہ اس کے لیے کافی مشکل ہیں, لیکن وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس پر ریئیکٹ نہ کرے, وہ اس پر کوئی ایسا کام نہ کرے جو وہ غلط سمجھتا ہے. تاہم وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں اس کے بہت زیادہ سٹریس پیدا کر رہی ہیں یہ سچویشنز, اور چونکہ وہ سٹریس پیدا کر رہی ہیں اس لیے وہ زیادہ افیکٹولی کام نہیں کر پا رہا. تو وہ یہ کیسے کر سکتا ہے, کیا یہی ہے آپ کا سوال؟
جی سر, کچھ مطلب اس میں صرف یہ میں اس کو یہ کر دوں گی کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ سٹریس پیدا ہو رہا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لمحے پر انسان ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سٹریس ہو جاتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے یا افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس سے ڈیل کر رہا ہے لیکن سٹریس سے بھی اگر, اور اس میں اس کا بڑا وقت جا رہا ہے, ضائع ہو رہا ہے, جو آپ کہنا چاہیں.
جی میں اس میں دو تین چیزیں آپ سے گزارش کروں گا جی. ایک تو یہ جو میرے حساب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ ایک چیز جو اپنے ذہن میں بہت زیادہ ہمیں یاد رکھنی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ کانورسیشن میں بھی اس کو یاد کراتے رہنا ہے, وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ایٹ رینڈم چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ. اگر ہم کسی مشکل میں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہیں اور ہماری بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہوئی ہے. ایک تو اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کو اپنا شیوا بنانے کی کوشش کرنی ہے ہم سب نے, ٹھیک ہے جی. واٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ مشکل ایٹ رینڈم نہیں آ رہی, کسی کے کرنے سے مجھے جو مشکل آ رہی ہے, کسی کے اقدام سے, کسی کی مشکل, کسی کی بدتمیزی سے, کسی کی بے عزتی کرنے سے, کسی کوئی بھی غلط کام کرنے سے جو مجھ تک وہ پرابلم پہنچ رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ میری بہتری کے لیے اس کی اجازت دیں گے تو پہنچے گی ورنہ نہیں پہنچے گی, ٹھیک ہے جی. ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے. دوسرا اپنی زندگی میں جو آپ کے تھاٹ پروسیسز ہیں, یعنی مثال کے طور پر آپ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت, کیا سوچ رہے ہیں آپ, جب بھی اپنی ایموشنز کو, نیگیٹو ایموشنز کو ہائی لیول پہ دیکھیں یا پریشان دیکھیں یا دکھی دیکھیں اپنے آپ کو, تو دو تین چیزوں کا دکھ ہوتا ہے جی زندگی میں. دکھ مثال کے طور پر ایک وہ دکھ ہے کہ جو ہمارے ساتھ اپنی اس آزمائش کے اندر آن ریگولر بیسس زندگی کے اتار چڑھاؤ کے نتیجے میں ہم نے فیس کرنا ہے, لیکن ایک وہ دکھ ہے کہ جو ہم خود اپنے آپ کو دینا شروع کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی, ظاہر ہے کہ اس پر اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش اس میں آپ کو ڈالا ہے इस मौके पर आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप उस जाति को अब बार बार सोचने लग पड़े, उसके बारे में बार बार ख्याल करने लग पड़े, तो वो तकलीफ आप जितनी दफा उसके बारे में सोचेंगे और जितनी डिटेल में सोचेंगे, आपके अंदर वही इमोशन दोबारा पैदा होगा। ये जो एस्पेक्ट है हम कोशिश कर सकते हैं कि इसको अवॉइड करने की,
सामने नजर आ रही है
जी, इसकी कोशिश कर सकते हैं जी कि हम we can stop thinking about things which are creating disturbances in us. हम इसकी कोशिश कर सकते हैं। और इसका एक बड़ा छोटा सा मैं आपको नुस्खा बताता हूँ कि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं और जिससे आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस पैदा हो रही हैं, वो आपके कंसर्न्स होते हैं, आम तौर पर वो आपके कंसर्न्स होते हैं, ठीक है जी। आप अपनी सोच को उधर से हटाकर उन चीजों के ऊपर ले आए कि आप क्या कर सकते हैं, ये सिचुएशन जो है जो मेरे सामने आ गई है और अल्लाह ताला की इजाजत से मेरी बेहतरी के लिए आई है, सबसे पहले तो इस ईमान के साथ इस जिंदगी को हमने गुजारने की कोशिश करनी है, और यही वो चीज है जो हमें हर वक्त गॉड कॉन्शियस बनाए। और ये 24/7 है जी, यानी इसमें देर इज नो डे ऑफ, कोई सैटरडे संडे को छुट्टी नहीं है, हर रोज हमने ये करना है और हर लम्हा ये करना है, इसको याद रखना है, इसको सोचना है, इसको इसको अपने जहन में ताजा रखना है। इसके बाद ये कोशिश कीजिए कि जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो आपके जहन में इस वक्त आ रहा है, वो क्या आपके सर्कल ऑफ कंसर्न से रिलेटेड है या सर्कल ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है। अगर सर्कल ऑफ कंट्रोल से रिलेटेड है तो वो आपको कभी ज्यादा नेगेटिव नहीं करेगा, वो आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन ज्यादा पैदा करेगा, वो आपके अंदर होप ज्यादा पैदा करेगा, वो आपके अंदर इस चीज की उम्मीद ज्यादा पैदा करेगा कि हम मसले को सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपका जो सोच है वो फोकस्ड है ऑन योर कंसर्न्स, तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। तो ये दो चीजें मैं अभी अर्ज कर रहा हूँ। इसके अलावा भी वो जो पूरी की पूरी हमारी जो हमारा सेशन है पॉजिटिविटी से रिलेटेड, वो असल में इन्हीं चीजों से रिलेटेड है कि हम अपने आप को कैसे वेरियस सर्कमस्टांसेस में, और वो सर्कमस्टांसेस जो हमारे कंट्रोल में कभी भी नहीं आने, ना आने हैं ना हमारी कोशिश करके हम उनको अपने कंट्रोल में ला सकते हैं, तो ये जब नहीं आने तो फिर किस तरह से इन सर्कमस्टांसेस के अंदर हमने वो जिंदगी गुजारनी है जो हमें कामयाबी की तरफ लेके जाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए थी। और इंशाल्लाह कोशिश अगर करेंगे और सिंसेयर होंगे, अपने साथ ही सिंसेयर होना है और तो किसी के साथ नहीं होना, तो फिर यकीनन अल्लाह ताला की मदद होगी और हम इसमें कामयाब भी होंगे। मैं आपकी बात का जवाब दे पाया हूँ जी, प्लीज।
जी सर, जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर। और दूसरा जो मैंने पूछा ये कि क्या ऐसी चीजें हमारी ज़हनी सलाहियतों पर और हमारी सेहत पर असर अंदाज होती हैं, जैसे मैंने सुना है कि, या और एक केस भी ऐसे देखा है कि वो बच्चा था और बहुत ज्यादा माहौल वैसा था उसके आसपास, तो वो जेनेटिकली भी हुआ होगा, लेकिन वो शिज़ोफ्रेनिक हो गया। तो इस तरीके से होता है, यानी हमारा जहन जो है वो बेकार भी हो सकता है, हमारी सेहत जो है वो भी उस पर भी असर होता है, हम कैसे डील करेंगे इनके?
नहीं, वो तो मैंने आपको डील करने का तो ये गुजारिश की कि ये जिस वक्त आप इन दो प्रैक्टिसेस को इख्तियार करें और फिर मुझे इसको कोशिश करके देखिए, ये एक हफ्ता आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, और देन मैं फिर से अर्ज कर देता हूँ, वो अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मैं उनको रिपीट कर दूंगा। आप इसको, इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अवेलेबल होगी, उसको दोबारा सुनकर इन दो प्रैक्टिसेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दें। असर होता है जी, देखिए ये असर क्यों होता है, इसलिए क्योंकि हमारा जो जहन है वो, जब आप एक चीज को सोचते हैं, ये जिसको आप इमोशंस कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप यू फीलिंग सैड और यू फीलिंग हैप्पी, ये डिफरेंट केमिकल्स हैं जो रिलीज होते हैं हमारे जहन से। और अगर कोई भी केमिकल जो कि आपके अंदर वो जो अवे इमोशंस हैं या जिनको नेगेटिव इमोशंस कहा जाता है वो ज्यादा पैदा करने लग पड़े, तो ये सैडनेस ही है जो डिप्रेशन बन सकता है, एंड डिप्रेशन कैन बिकम यू नो अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। तो असर तो होता है। इसी तरह से अगर आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं तो वो आपके हार्ट पर, आपके ब्लड प्रेशर पर और इस तरह की चीजों पर असर डाल सकता है। सो आई टोटली एग्री विद यू कि इन चीजों का असर होता है, लेकिन जो मैंने आपसे गुजारिश की, एक मैंने आपको बताया उसकी स्किल क्या है, ठीक है जी, और दूसरा मैंने आपको बताया कि इस पूरी जिंदगी के बारे में हमारी अप्रोच, हमारा पैराडाइम क्या है। यानी हम असल में जब हम ये कहते हैं कि हम खुदा को मानते हैं, तो असल में हम खुदा को क्या मानते हैं, इस सवाल का मैंने आपको कहा कि इसको हमने अपने अपने जहन में ताज़ा रखना है, और इसको ताज़ा रखते हुए ज़िंदगी के चैलेंजेस को इस तरह से देखना है कि ये हमारे लिए एक बेहतरी की गुंजाइश पैदा कर रही है। ये वही बात जिसको इकबाल ने कहा था ना कि तंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए का, यानी वो तंदिए बादे मुखालिफ जो है वो असल में मुझे गिराने के लिए नहीं है, वो मुझे प्रॉब्लम्स में डालने के लिए नहीं है, वो मुझे और बेहतर और बुलंद करने के लिए है। अगर मैं इसको वाकई मानता हूं और महज एक शेर नहीं समझता, तो फिर मैं उस चैलेंज को जिस स्पिरिट से लूंगा वो असल में मेरे लिए नुकसान दे नहीं इंशाल्लाह फायदे की चीज बनेगी इंशाल्लाह।
जी सर, जज़ाकअल्लाह, मैंने दोनों पॉइंट्स आपके नोट डाउन कर लिए, थैंक यू।
मोस्ट वेलकम जी,
सर। ये यूट्यूब पर दूसरा सवाल आया ज़ोहरा इमाम साहिबा का, आपको सर इनबॉक्स से।
बदगुमानी अगर हमने ख़त्म कर दी है और अपने तमाम मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देने का इरादा किया हुआ है, अब इस बुनियाद पर हमें सब्र का मुजाहरा करना चाहिए या शुक्र का? दोनों ही चीज़ें हैं जी, यानी जिस वक्त एक सब्र की आजमाइश में पड़े और उसमें उसको पूरा कर सकें तो अल्लाह ताला से उस तौफीक के लिए भरपूर शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये तौफीक खुदा के दिए ही से मिल सकती है जी। यानी इस मामले में मुझे आई हैव नो डाउट्स कि इंसान के अंदर जो पोटेंशियल है वो अगर इंसान इसकी कोशिश करे कि मैंने अच्छाई के पोटेंशियल को बेहतर करना है तो अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर तौफीक मिलती है, अल्लाह ताला की तरफ से ज़रूर ऐसे हालात मिलते हैं जिनमें वो सपोर्ट हो एंड और लोग भी मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करने में मददगार होंगे इंशाल्लाह। आई बिलीव दैट दीज बोथ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसको हमें अपने ज़हन में रखना चाहिए हमेशा इंशाल्लाह।
जी सर, जिस तरह ये उस कन्वर्सेशन पे डिस्कशन हो रही है तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जब लोग बात सुनना नहीं चाहते या जान के वो टीज करने का कन्वर्सेशन में होता है, तो उसमें अगर हम अपनी कन्वर्सेशन खत्म कर देते हैं तो इसमें तो फिर ज्यादातर टाइम फिर एक खामोशी नहीं हो जाएगी कि मतलब हम जब दूसरी तरफ से सारा वक्त यही होता जा रहा है कि डिबेट में हर कन्वर्सेशन चेंज हो रही है, तो फिर मैक्सिमम टाइम तो एक मेरी तरफ से तो फिर वो एक यही होगा ना कि दूसरा सुनना ही नहीं चाहता तो फिर मैं खामोश रहूं।
इस रिलेशनशिप में शायद खामोश ही रहना पड़ेगा जी सर, यानी टिल द टाइम दैट दूसरा अपने रवैये को रिव्यू करके उसको बेहतर करने के लिए आमादा हो, अपनी इस फीलिंग को जरूर कोशिश करे बयान करने की कि हाउ इट मेड यू फील। ये जो एस्पेक्ट है जी आमतौर पर हम नहीं करते, आमतौर पर हम अवॉइड कर जाते हैं इस फीलिंग को। देखिए कुछ रिलेशनशिप बहुत एंटेगनिस्टिक हो जाते हैं, उनकी हिस्ट्री ऐसी हो चुकी होती है कि बहुत दूरियां पैदा हो जाती हैं, उसमें बड़ा मुश्किल होता है कि दूसरा ये बात सुने समझे या उस पर कोई कोई करेक्शन करे। लेकिन हर रिलेशनशिप का ये मामला नहीं है, यानी हो सकता है कि किसी मौके पर किसी ने जज्बात में आके कोई ऐसी बात कर दी हो जो कि मुझे हर्ट कर दे, लेकिन मुझे ये कहना कि मैं आई फेल्ट हर्ट जब आपने ये बात कही थी, आई फेल्ट अ लॉट ऑफ पेन कि जब आपने ये फरमाया था, तो क्या मुझे गलत समझाऊं इसको, क्या मैं डू यू थिंक दैट आई शुड आई एम जस्टिफाइड इन फीलिंग हर्ट। ये जो एस्पेक्ट है ये अक्सर औकात दूसरे को इस चीज की रिकग्निशन कराने पर ले आता है कि हमने जो कमेंट किया वो ठीक नहीं था। ताहम वही बात है जी कि हम ये अल्लाह ताला की तौफीक है कि अगला जो है वो किस हद तक अपने आप को करेक्ट करने के लिए आमादा हो और हम उससे बेहतर कम्युनिकेशन और बेहतर कॉन्वर्सेशंस कर सकें। हमारी तरफ से ये चीज़ कि वो उसको रिटेलिएशन की ज़रूरत है या एंटेगनिस्टिक होने की ज़रूरत है, इसको हम अपनी तरफ से कम करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके दिल में कम होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती।
तो सर जिस तरह आजकल एक हमारा कल्चर बना हुआ है ना, पॉलिटिकल इश्यूज पे सारा वक्त डिबेट हर फैमिली में चल रही है और कोई भी सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर ऐसे टाइम में क्या अवॉइड करना चाहिए?
ऐसे टाइम में इस तरह की डिबेट्स को तो अवॉइड ही करना चाहिए थी जिसके अंदर हमारी भी जो राय है वो हेयर से की बेसिस पर है और दूसरे की राय भी जो है वो हेयर से की बेसिस पर है, यानी ना हम पूरे फैक्ट्स जानते हैं ना दूसरे जानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो उसमें सिटीजन जो हैं वो अक्सर औकात प्रोपोगेंडे का शिकार है, या लेफ्टिस्ट प्रोपोगेंडा है या राइटिस्ट प्रोपोगेंडा है, वी डोंट नो. और दोनों ही जो हैं जिस जिस जगह पे हम खड़े हैं वो भरपूर जज्बात के अंदर शामिल है. मेरा ये ख्याल है कि वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि अफेक्टिव टॉपिक्स भी हों, यानी ऐसे टॉपिक्स हों जिसके जिसके बारे में मैं कुछ कर भी सकता हूँ. देखें मिसाल के तौर पर इफ वन ऑफ द टू पार्टीज और थ्री और मोर पार्टीज इज करेक्ट, आज वो ज्यादा बेहतर है, तो उससे मुझे क्या होगा, यानी मैं क्या करूं अगर एक बंदा जो है वो दूसरे से ज्यादा बेहतर है. तो किसी को ये राय रखनी है और वो इसमें खुश है कि वो अपनी गुफ्तगू में आपसे जीत गया है, खुश होने में क्या फर्क पड़ता है. यानी ये कोई बहुत ज्यादा अहमियत की बात नहीं है, ना इससे मेरी जिंदगी पे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ना है, ना किसी और की जिंदगी पे पड़ना है जी. इट्स गोइंग टू स्टे एज इट इज. तो व्हाट इज इट दैट विल हेल्प मी जी इस मामले में, अगर मैं अपने टॉपिक्स को भी सिलेक्टिव हो जाऊं थोड़ा सा, तो दैट विल इंशाल्लाह बी वेरी हेल्पफुल.
ठीक है सर. सर एक और पॉइंट था कि जिस तरह आपने कहा कि हम एट ए टाइम बहुत से क्वेश्चंस डाल देते हैं दूसरे के साथ, लेकिन जैसे मुझे अपना पर्सनल भी लगता है, लेकिन सोच ये आ रही होती है कि उन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं, और पहले क्वेश्चन का आंसर भी सही तरह अभी सुना नहीं होता तो नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ जहन चला जाता है. तो इसकी कैसे प्रैक्टिस की जाएगी कि ये पेशेंस आए?
मेरा ख्याल है एक तो इस पे कॉन्फिडेंस रखें, और ये कॉन्फिडेंस आपकी प्रैक्टिस से, यानी फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो एक नोट पैड साथ रख लें कि मैंने उसको नोट करते जाना है कि ये भी क्वेश्चन है. और जब तक एक सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं हो गया, उसको हम कोशिश करेंगे कि अपनी सेटिस्फेक्शन की हद तक, बिकॉज ये कोई लिमिटेड सेशन नहीं है. फॉर इंस्टेंस हम इस सेशन की बात करें जो इस वक्त हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आज जो बात हुई है वो अगली दफा नहीं हो सकती. आप अगली दफा आके फिर अपना ये क्वेश्चन जो है इसको फिर से रख सकते हैं, और ये ऐसे बात कर सकते हैं कि मुझे लास्ट टाइम ये बात हुई थी और मुझे लगा कि मुझे बात समझ में आ गई है, लेकिन इस पे कुछ मजीद सवाल आते हैं. देर इज नो हार्म इन दैट. मेरा ख्याल है कि ये हमें इसको प्रमोट करना चाहिए, हमें अपने सेशंस को लर्निंग सेशंस बनाना चाहिए. और लर्निंग को टीचर मैनेज नहीं कर सकता, इसको जेहन में रखें, टीचर सिर्फ टीचिंग को मैनेज कर सकता है. लर्निंग को असल में स्टूडेंट्स के जहन ने अपने अंदर डाइजेस्ट करना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है. जब तक के स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं है कि मुझे मेरी बात का जवाब अच्छी तरह से मिल गया है और मैं इसको अब ट्राई आउट करता हूँ, लेट मी सी इफ आई कैन अप्लाई दैट इन माय लाइफ, तो इसके नतीजे में हकीकत में लर्निंग होगी. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको इसके बारे में कोई जल्दी नहीं है. हमें ये नहीं है कि अगर अभी सवाल नहीं हो सका तो फिर कभी मौका ही नहीं मिलेगा. हैव पेशेंस, और ये पेशेंस जो है ये इंशाल्लाह कारगर होगी. और जो पहला सवाल है अगर उसका जवाब अभी तसल्ली बख्श नहीं मिला है, तो उसको ये ना टीचर को इस पे ऑफेंड फील करना चाहिए, ना स्टूडेंट को इस पर कोई शर्म करनी चाहिए कि मैं इसके फिर बारे में फिर पूछ लेता हूँ कि मुझे नहीं मिल सका जवाब, मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ या मैं अभी तक मुतमिन नहीं हुआ हूँ. इसमें कोई हर्ज नहीं समझना चाहिए.
ठीक है सर. वैसे जो नवीद साहब ने वो टीचर का और स्टूडेंट का कहा था, मेरा अपना मेरे बेटे का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि उसकी कंप्लेंट यही आती थी कि वो बहुत क्वेश्चन करता है.
Quite right. ये टीचर्स के लिए ये इससे बढ़कर डिस्टर्बेंस और कोई नहीं हो सकती थी. प्रॉब्लम ये है, यानी इसलिए क्योंकि टीचर ने कोर्स खत्म करना है, उसको ये इंटरेस्ट नहीं है कि बच्चों के सवालों के जवाब देने. मैं नवीद साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, नवीद साहब को मैं पर्सनली भी जानता हूँ, और वो उनका सवाल इधर से ही एमिनेट किया था कि हम हेल्प करना चाहते हैं लेकिन डाइवर्सिफाइड किस्म के प्रॉब्लम है मेरे ऊपर. मुझे मैनेजमेंट ये चाहती है कि कोर्स खत्म करो, स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे टाइम दो, कुछ स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे साथ रिलेशनशिप में अच्छे तरह से हम एंटर हों, अपने टीचर के साथ हमारा रिलेशनशिप ट्रस्ट का हो. ये अनफॉर्चुनेट चीज है कि एक टीचर जो है उसके लिए ये मुख्तलिफ एंगल से उसको पुश और पुल किया जा रहा है. और इसकी एक खास वजह है, कभी हम एजुकेशन पे बात करेंगे तो एक पूरी मूवमेंट है जिसने कि टीचर्स की एम्पावरमेंट को कम किया है, और ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि ये खत्म किया है, क्योंकि इसके नतीजे में टीचर्स की, क्योंकि टीचिंग से ज्यादा शायद क्रिएटिव काम और कोई हो नहीं सकता जी. اور جب آپ اس کو بھی آرگنائز کرنے کی کوشش کریں تو اس کو اب آپ نے نقشے بنانے ہیں اس کے, اس کا روڈ میپ بنائیں گے, اس کا آپ یہ سب کچھ کریں گے, وہ آرگنائز کریں گے, تو ساری کریٹیوٹی ختم ہونی شروع ہو جائے گی اس کے اندر سے. اور آپ ڈیل کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ, ٹھیک ہے نا جی. اور انسان, میں ٹیچر سے پوچھتا ہوں بار بار کہ آپ اگر کسی موقع پر بہت ڈسٹربڈ ہیں, آپ تو ماشاء اللہ سب گرون اپس ہیں, کسی موقع پر بہت زیادہ ڈسٹربڈ فیل کر رہے ہیں, کہ کوئی پریشانی ہے خدا نخواستہ, کوئی کسی چیز کی کوئی سٹریس ہے خدا نخواستہ, تو کیا آپ لرن کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, لرننگ بڑی مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, وہ جو بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے, اور ان کی ایک بچی رو رہی ہے خدا نخواستہ, یا بچہ جو ہے وہ پریشان ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ آئی ہیو ٹو اگنور دس چائلڈ بیکاز مجھے تو کورس ختم کرنا ہے, اور یہ دس از اے فیکٹ آف لائف کہ اس وقت ہمارے انسٹیٹیوشن اسی طرح چل رہے ہیں, ہم کو یہ اگنور کرنی پڑتی ہیں چیزیں, اس لیے کیونکہ ہم انسانوں کے ساتھ تو معاملہ کر ہی نہیں رہے, ہم تو اپنا کورس کمپلیٹ کرنے آئے ہیں. کسی کو سمجھ میں آتا ہے, آئے نہیں آتا نہ آئے. تو ایک دو چیزیں جو مجھے پرسنلی بھی پرابلم پیدا ہوئی وہ یہ ہے کہ پروپوز اے ورک شاپ, کہ میں یہ ورک شاپ کر رہا ہوں, تو میں عام طور پر اس کی رینج بتاتا ہوں کہ یہ تقریباً 20-30 سیشنز کے درمیان ہوں گی. تو مجھے اکثر اوقات اس پر یہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹ نمبر بتاؤ ان کو کہ انہوں نے کتنے ہفتوں کے لیے کمٹ کرنا ہے, تو میں ان کو یہ بتاتا ہوں کہ بات یہ کہ میں تو اس کو 10 سیشن میں بھی کمپلیٹ کر دوں گا, 5 میں بھی کر دوں گا. ٹھیک ہے جی, بات سمجھنی ہے, سمجھانی ہے. I want my participants to learn. اور لرننگ کو میں کیسے بتاؤں اگر ایک پارٹیسپینٹ کا سوال جو ہے اس کا جواب نہیں ملا ہے, تو وہ اگلے ہفتے بھی شاید سارے کا سارا سیشن اس پہ گزر جائے. لیکن انفارچونیٹلی ہم یہ کرتے نہیں. آئی تھنک آپ کی بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے, کہ یہ جو نوید صاحب نے بھی پوچھی اور جو آپ کے بیٹے کا ایکسپیرینس بھی ہے, آئی تھنک دس از ویری انفارچونیٹ. ہمارا اب ٹارگیٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں بھی کورس کوریج ہے, نہ کہ اسٹوڈینٹس لرننگ.
السلام علیکم سر.
وعلیکم السلام.
سر وہ ویسے اس سے تھوڑا ریلیٹڈ نہیں ہے ٹاپک سے, لیکن پھر بھی میں پوچھ لیتی ہوں کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ بلیور تو ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں, لیکن آپ جو ہے پھر بھی آپ کو انگزائٹی کیوں ہوتی ہے اگر آپ بلیور ہیں, اور آپ کو اگر کوئی نیگیٹو بات کر دیتا ہے کوئی, تو وہ آپ کو اسپیشلی میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو میں اب تو خیر میرے ایکس ہیں, لیکن وہ ان کی بات بہت زیادہ مجھے جو ہے نا وہ اس پہ نا مطلب غصہ آتا ہے, اور تو اس طرح کی سچویشن کوئی اور یہ بات کرتا ہے جیسے مائی سسٹر اور کوئی اور کچھ بھی کہتے ہیں, مجھے کوئی اتنی نہیں ہوتی, لیکن ان کی بات مجھے بڑی ہٹ کرتی ہے جا کے. اور دوسرا یہ کہ وہ انگزائٹی کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم, ٹرسٹ کرتے ہیں ہم, لیکن وہ پھر وہ انگزائٹی میں بھی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں کوئی وے آؤٹ نہیں نظر آ رہا ہوتا اپنی سچویشن کا, تو آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں, کسی سے بھی ہیلپ کی کرتے ہیں, تو وہ ہیلپ نہیں آ رہی ہوتی ہے, تو وہ اس چیز جو ہے وہ انگزائٹی میں چلی جاتی ہے. اور دوسرا ایک کوشچن یہ ہے کہ ہم خود کو کوئی ایسے اسٹیپس ہیں, کوئی ایسے پوائنٹس ہیں جن کو فالو کر کے ہم جو ہے اپنے آپ کو ہمبل کر سکیں. تو ویسے تو ایک اور سوال بھی ہے, لیکن آپ چلیں دو کا ہی دے دیں, پھر میں نیکسٹ ویک پوچھ لوں گی ایک اور کوشچن.
ہم اس کو ذرا واضح کیجیے گا, اپنے آپ کو ہمبل کر سکیں
مطلب یہ کہ عاجزی اختیار کرنا کیسے, اس کے کوئی پوائنٹس ہیں, اس کے کوئی اسٹیپس ہیں, یا پھر جیسے ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عاجزی اختیار کریں, تو وہ بار بار جو چیز جو ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. اور
ٹھیک ہے دیکھیے, ایک بات تو یہ کہ یہ جو آپ نے پہلی بات فرمائی ہے, اس میں جس وقت آپ نے فرمایا کہ آپ کی بہن یا آپ کے کوئی اور اگر وہی بات کرتا ہے تو وہ آپ کو اتنی پنچ نہیں کرتی کہ جتنا,
نہیں وہی بات نہیں ہے, نہیں وہی بات نہیں, لیکن کریٹیسائز کرتا ہے اگر کوئی سسٹر کریٹیسائز, سم ٹائمز وہ سیم بات پہ نہیں کر رہی ہوتی لیکن وہ ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے, لیکن جو ہسبینڈ جس مائنڈ سیٹ سے اور جس طرح سے اس چیز کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں نا, وہ بڑا وہ چیز آپ کو وہ بڑا وہ اس سے وہ آپ کو مطلب آپ کو ایک طرح توڑ کے رکھ دیتی ہے مطلب.
یہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کرٹیسزم آئی ہے بہن کی طرف سے, اس نے اس طرح سے ہرٹ نہیں کیا جس طرح سے کسی اور کی طرف سے جب آئی ہے تو اس نے ہرٹ کیا, तो यहाँ पर जो फर्क है वो असल में मेरी परसेप्शन का फर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मैंने उस क्रिटिसिज्म को जो बहन की तरफ से आ रही है उसको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखा भी है और परसीव भी किया है, और ये अज्यूम भी किया है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो रही है, जबकि जो दूसरे की तरफ से जो मुझे हर्ट कर रही है जब वो आती है वही बात या उससे मिलती जुलती बात या उससे हट के कोई और क्रिटिसिज्म अगर उसकी तरफ से आती है तो मुझे वो हर्ट भी करती है, वो स्ट्रेस में भी डालती है, वो डिस्टर्ब भी करती है, वो दुख भी पहुंचाती है, उसको गुस्सा भी चढ़ता है, ये सारी चीजें जब होती हैं। तो इसमें जो चीज समझने की है और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि असल में इसमें जो फर्क पैदा हुआ है वो मेरे अपने माइंडसेट पे पैदा हो रहा है कि बात को मैं किस तरह से और किस अजम्पशंस के साथ किन अजम्पशंस के साथ सुन रहा हूँ, नंबर एक। नंबर दो जो बात मैं अर्ज करना चाहूंगा वो ये है कि आपने इस चीज का जिक्र करवाया कि हम खुदा को मानते हैं लेकिन सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हम एंजाइटी भी कभी शिकार हो जाते हैं। देखिए एंजाइटी जिस तरह मैंने अर्ज किया कि जिंदगी में सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिन पर आपको दुख होगा, यानी ऐसा नहीं है जिंदगी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं गुजरनी है, ऊंच नीच आनी है, और बिकॉज वी आर टेकन बाय सरप्राइज, हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते हम डिपेंडेंट भी हैं, हम इंटरडिपेंडेंस के अंदर जीते हैं, तो इसका इसका बहुत इम्कान है कि कुछ चीजें जो हैं वो हमें हर्ट भी करेंगी, लेकिन वो हर्ट हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए और वो अब हमें कॉन्टिन्यूसली हर्ट करने लग पड़े ये हमारे इख्तियार में है। हमने कोशिश ये करनी है कि इनिशियल सेटबैक के बाद अपने आप को वापस सेटल करें और ये समझें कि ये जो सारी जिंदगी में सेटअप हो रहा है ये अल्लाह ताला की इजाजत से हो रहा है। इसी चीज को मैंने अपनी अपनी अपने ईमान का, जब मैं कहता हूँ कि मैं खुदा को मानता हूँ तो इसका मतलब असल में, हम इंशाल्लाह इसको आगे चल के ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, असल में ये है कि मैं खुदा को अपनी जिंदगी में एक एक्टिव डिसीजन मेकर और एक एक्टिव जज की हैसियत से और एक एक्टिव ट्रायल देने वाले की तरफ से की हैसियत से जानता हूँ, इसलिए कि मेरी जिंदगी जो है ये स्टार्ट टू एंड मेरी जो कॉन्शियस लाइफ है वो असल में आजमाइश है और बिला मकसद आजमाइश नहीं है। यानी इसमें आजमाइश में कोशिश ये है कि मेरे पोटेंशियल के मुताबिक मैं फ्लरिश करूं, मैं एलिवेट करूं अपने आप को, और अगर हालात जो हैं वो अच्छे रहें सिर्फ मुश्किल में ना पड़ूं तो वो एलिवेशन के मेरे अंदर जो पोटेंशियल हैं वो पूरी तरह से निखरेंगे नहीं। इस चीज को अपने जहन में ताजा रखना और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना कि मैंने इस चीज को समझा और इसके मुताबिक अब अपने रिस्पॉन्सेज को मैं डिटरमिन करने की कोशिश करूंगा। ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको सामने रख लीजिए, जो ह्यूमिलिटी है जी, हम्बलनेस अपने अंदर पैदा करने के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि यानी मैं कोई भी चीज जो अपने, यानी इससे बढ़कर और क्या चीज हो सकती है कि मैं अपनी सांस लूंगा तो जिंदा रह पाऊंगा, और मैं ये सांस मुझे नहीं आ सकती जब तक कि खुदा इस पूरी कायनात के अंदर गैसेस का एक खास बैलेंस ना मेंटेन करे। मैं अपने तौर पर जिंदा नहीं हूं, यानी जिंदा ही नहीं हूं, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, बाकी चीजों को तो ये सोच लीजिए, यानी मेरी बात आप तक पहुंच रही है इसलिए क्योंकि मेरी आवाज निकल रही है, और ये आवाज सिर्फ इसलिए निकल रही है कि अल्लाह ताला भी निकालने दे रहे हैं। यानी ये मेरे साथ ये पिछले दो हफ्ते में जो सिचुएशन थी, आई कुड नॉट टॉक वेरी फ्रीली बिकॉज खांसी आनी शुरू हो जाती थी, ठीक है जी, नहीं इजाजत इस चीज की मिल रही कि मैं कर सकूं। इस ये जो हम्बलनेस है कि ये और ये ट्रू हम्बलनेस है, ये ऐसा नहीं है सिर्फ अपने आप को रिमाइंड कराते रहना, अपने आप को ये याद कराते रहना कि मैं तो असल में खड़ा हूं इसलिए क्योंकि मेरे पैर अल्लाह ताला खड़े होने दे रहे हैं, मैं असल में सांस ले रहा हूं इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला सांस लेने दे रहे हैं। यानी मेरी जिंदगी कंप्लीटली एक एक लम्हा मेरा डिपेंडेंट है खुदा की तरफ से इजाजत पर। इस चीज को अपने अंदर जिंदा रखना, इसके नतीजे में लाजमन ह्यूमिलिटी पैदा होगी जी इंशाल्लाह।
जी मोहित साहब, मेरा सिर्फ यह है कि कई दफा आपकी जिंदगी में कोई ऐसे इंसान होता है कि जिसकी वजह से आप बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, तो फिर आपकी एक ये हैबिट हो जाती है कि हर चीज को आप नेगेटिव तरीके से देखते हैं, इट बिकम्स अ हैबिट। अब ये हैबिट तोड़नी किस तरीके से इंसान तोड़े, बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली समबडी इज बीइंग नेगेटिव विद यू, तो इट बिकम्स अ पैटर्न इन यू दैट यू जस्ट गेट डाउन एंड यू ऑल्सो गेट डिप्रेस्ड।
एक बात तो ये कि इसकी रिकग्निशन जी पैदा कर लें कि अपनी लैंग्वेज को हमने ठीक करनी है, यानी हमने अपनी लैंग्वेज को इस तरह से करना है विच एक्चुअली पुट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, ये किसी और की वजह से मैं नेगेटिव नहीं हुआ हूँ, मैं अपनी सोच की वजह से नेगेटिव हूँ और मैं अपनी सोच को ठीक करूंगा, और इसमें इट विल बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ अ लॉन्ग टर्म हैबिट, इट इज गोइंग टू टेक टाइम, आई विल बी वेरी पेशेंट, आई विल बी वेरी काइंड ऑन माई सेल्फ एज वेल, आई विल कीप फॉलिंग डाउन, आई विल नॉट गिव अप, इस बेसिस पर मैं खड़ा हूंगा और अल्लाह ताला के भरोसे पर मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू बी, कोई भी जिंदगी में, इस चीज को ध्यान में रखिए, मैं इसकी मिसाल देता होता हूँ कि जिंदगी में जो डाउन हिल है मूवमेंट वो हमेशा आसान होती है, अप हिल मूवमेंट में एक एक कदम पर जोर लगता है जी। हमने अपनी जिंदगी की एलिवेशन में इस चीज को बहुत अहमियत देनी है कि हमने अप हिल जाना है और इंशाल्लाह वी विल नेवर गिव अप। ये जो एस्पेक्ट है अगर ये मेरे अंदर जिंदा रहेगा तो यकीन करें कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी सिंसेरिटी के बाद अल्लाह ताला भी मदद फरमाएंगे इंशाल्लाह।
Thank you. Bas one has to just keep persevering and trying.
And taking responsibility that if I am negative, it is not because of anything else. It is because of my own mental processes. I have control over them. To keep this in mind that I have control over them. Things are not going to be, you know, things don't have to be perfect for me to be a positive person. Things can be the way they are. I can be a different person. मैं इसकी जब when I talk about positivity, when I talk about this thing, ये जो मैंने पिछले दिनों कहा था कि हम इसको शुरू करेंगे to develop a positive mindset, उसमें मिसाल देता हूँ इस चीज की कि according to research, you know, ये हार्वर्ड के टीचर्स ने कुछ, हार्वर्ड के टीचर्स ने नहीं, शायद उससे पहले की बात है, ये डैनियल गिलबर्ट है हार्वर्ड के टीचर्स, इन्होंने इस रिसर्च का जिक्र किया था, यानी देवर टू पीपल एट द सेम डेट कि जिनको एक को ये कि जिसको एक मिलियन डॉलर्स की लॉटरी निकली और एक आदमी जो पैराप्लेजिक हो गया जिसके बाजू या टांगे उसी दिन कट गई हैं किसी वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से, और दे ट्राइड टू सी कि आफ्टर 6 मंथ्स कौन ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है जी। एंड व्हाट दे रियलाइज्ड वाज, व्हाट दे फाउंड आउट वाज कि ये जो दोनों लोग थे, चाहे वो उस वो हो कि जिसकी लॉटरी निकली है मिलियन डॉलर्स सडनली रिच विंडफॉल गेन, और चाहे वो हो कि जो विंडफॉल लॉस में चला गया और इतने बड़े नुकसान में चला गया कि उसकी जिंदगी चेंज हो गई, तो व्हाट दे फाउंड आउट वाज कि उनका जो पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का लेवल था जो उन्होंने डिटरमिन किया हुआ था, वो वही था जो उस एक्सीडेंट से कुछ देर पहले था, यानी इट डिड नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस ऑन देयर लाइव्स आफ्टर 6 मंथ्स। ऑब्वियसली इमीजिएटली तो बहुत फर्क पड़ेगा, जिसका मैंने भी जिक्र किया कि एक वो दुख है, वो मुश्किलात हैं जो आती हैं तो मुझे असर करेंगी, लेकिन मैंने उन असर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है या नहीं बनाना, अल्लाह ताला ने इसमें मेरी गुंजाइश रखी हुई है, आई विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट। बट इंशाल्लाह जी, इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन ऑन दिस, एनीवन एल्स एज वेल, वी विल इंशाल्लाह मीट नेक्स्ट वीक एंड वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर।
थैंक यू सो मच, शुक्रिया,
अस्सलाम वालेकुम।